ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की तो आज के इस रविवार के अधिक मास के परम एकादशी के संध्या के सभा में आपका सबका स्वागत है। अधिक मास के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि अधिक मास अब समाप्त होने वाला है और ये हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति ने अभी तक अधिक मास का कोई व्रत लिया नहीं होगा, तो अभी भी समय है। आज 10 तारीख है और 13 तारीख तक अधिक मास है, क्योंकि अधिक मास में अगर हम व्रत नहीं लेते हैं तो पिछले हमने जितने व्रत किए थे वो सब शून्य हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वैष्णव खंड में ये लिखा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ आगे पीछे किया है और वो आपको रखना है इंटैक्ट, अधिक मास का व्रत करना चाहिए। और एक महीने का व्रत है, वो है कार्तिक महीने का। अगर कार्तिक महीने का व्रत कोई नहीं करता है और अधिक मास का व्रत नहीं करता है तो पिछले सारे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम कितने भी आलसी होंगे, आलसी में हमने अगर गोल्ड मेडल प्राप्त किया होगा आलसी होने में, फिर भी उस व्यक्ति को भी अधिक मास का व्रत करना चाहिए। कारण इसका ऐसा है कि छोटे से समय में छोटा सा कार्य करने से 1,600,000 बार लाभ मिलता है आम समय के अलावा इस महीने में करने से। इसलिए मैं किसी को पूछूंगा नहीं किसने व्रत लिया है नहीं लिया है, लेकिन नहीं लिया है तो उन लोगों को ये सोचना है कि आज से ही ऐसा व्रत ले लें जो बहुत आसान है और 3 दिन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुछ भी जप नहीं करते हैं तो 1 माला महामंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप 4 माला कर रहे हैं रोज तो आप 1 माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और ये कर ही रहे हैं तो जैसे हम लोग 16 माला करते हैं तो आप लोग 2 माला 4 माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आज एकादशी का दिन है, हमारे भक्त मुंबई में एक जगह पर बैठे हुए हैं और 108 माला जप कर रहे हैं। सवेरे 5 बजे शुरुआत किया है, रात को 10 बजे तक जप करेंगे, ऐसा भी होता है। हम लोग उस चीज़ में कहीं भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ लोग कर सकते हैं, करते हैं, कर पाते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। हमारे पास भी कुछ इच्छा शक्ति भगवान ने दी है, समय दिया है, अधिक मास का महत्वपूर्ण मूल्यवान समय दिया है, तो मनुष्य बनने के बाद में ऐसा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बचपन में हमें सुनाते थे ऐसा अधिक मास आ रहा है, पता नहीं चलता था क्या चल रहा है, क्या करना होता है, लेकिन भगवान की दया से, भक्तों की दया से पता चलने लगा कि क्या करना होता है। अभी जीवन अर्थपूर्ण होने लगा है क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त हो गया है। भक्तों का संग प्राप्त होने से सारी वो महत्वपूर्ण चीज़ें पता चलती है जो मनुष्य होने के बाद हमें जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाकी लोगों के साथ मिलेंगे तो आपको फिर पैसा कैसा कमाना है, कैसा आनंद लेना है, भोग कैसे लेना है, विदेश जाना है, देश जाना है, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, क्या पहनना है, क्या लेटेस्ट मोबाइल कौन सा आया है, उसकी जानकारी बिना पूछे मिल जाती है। इंद्रिय भोग, इंद्रियों का भोग और अच्छी तरह कैसे करना है, उसकी जानकारी ऑटोमेटिक मिल जाती है, लेकिन भगवान के विषय की जानकारी जो है ना वो दुर्लभ है। और वही प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन दिया है, वो छोड़कर और कुछ हम करते रहते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे उस हर चीज़ का एक फल होगा और वो फल की एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी, और उसके कुछ फल जानवर के जीवन में मिलेंगे भोगने को, कुछ फल मनुष्य के जीवन में मिलेंगे, कुछ फल नरक में मिलेंगे, तो वही उतनी बार हमको अलग जगह पर वापस आना पड़ेगा और वो जीवन जीते हुए और नए कर्म की लिस्ट बनेगी और 10 जगह जाने का प्लान बनेगा, लेकिन कोई छूटेगा नहीं इसमें से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भगवान कृष्ण ने भी गोवर्धन की लीला में बताया हुआ है कि कर्म का सिद्धांत जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा समझने का प्रयास मत करो, क्या नहीं करना है वो समझ लो और क्या करना है वो समझ लो, बाकी भगवान संभाल लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी देखो, हम किसी ज़माने में स्कूल के विद्यार्थी थे, फिर युवावस्था में मेडिकल के विद्यार्थी थे, आज अभी जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश कर चुके हैं, है ना, और एक समय आएंगे तो और 75 का सेलिब्रेशन हो जाएगा बर्थडे का, वो भी हो सकता है। समय रुकने वाला नहीं किसके लिए, समय आगे बढ़ता ही रहेगा। और कालोस्मी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं समय हूँ और समय बनकर आपके अंदर जो भी चीज़ है वो सब मैं छीन लेता हूँ। टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, सब चीज़ जो आप समझते हैं आपकी है, आपका शरीर, आपकी युवावस्था, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी डिग्री, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी, जो भी आप समझते हो आपका है, वो सब काल के रूप में भगवान छीन लेते हैं। तो जो भक्त नहीं होता है भगवान का, उसके लिए भगवान काल के रूप में आते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान भगवान बनकर, प्रेमी भगवान बनकर आते हैं। जैसे अगर हम चोर हैं तो गवर्नमेंट हमें पुलिस के रूप में मिलती है और जेल खाने में डाल देती है, अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो हम अच्छे अच्छे लोगों को मिलते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों को बीच में बैठने का मौका मिलता है, चॉइस हमारा है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं बता रही है कि आप गुनाह करो और जेल में जाओ, लेकिन गुनाह करेंगे तो जेल में डालने की व्यवस्था करके रखी हुई है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में हमको सब जगह पर ये आदेश प्राप्त है भगवान के द्वारा कि करना क्या है हमको जिंदगी में, और वो कुछ लोग पालन करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, उनकी चॉइस है, भगवान अपने चॉइस में कभी भी दखल नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के आदेशों को सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारते हैं, उन्हें भगवान अपने पास ले जाते हैं, और जब तक नहीं ले जाते हैं, जब तक यहाँ जी रहे हैं, वो भी आनंदी सुखी जीवन होता है, दिव्य गुण का विकास होता है। दिव्य गुणों का विकास होकर हमारा चरित्र प्रगत हो जाता है, कैरेक्टर इम्प्रूव्स, और चरित्र ही सब कुछ है, और चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र गया तो सब कुछ गया, पैसा गया कुछ नहीं गया, दोबारा हम कमा सकते हैं, आरोग्य गया तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, कुछ रिपेयरिंग करना पड़ेगा, लेकिन चरित्र गया तो सब जीवन समाप्त हो गया, फिर जीवन है लेकिन नहीं के बराबर। तो वो चरित्र का विकास उत्कर्ष करने के लिए ये मनुष्य का जीवन दिया है हमको, और इस मनुष्य जीवन के हर क्षण में वो शक्ति है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, भगवान की चेतना में रह सकते हैं, भगवान के लिए स्मृति में रह सकते हैं। हर एक व्यक्ति अभी भी, आज तक और अभी भी और आगे भी, निरंतर चिंतन में रहता है। आप इस बात को मानते हो? हम सब लोग समाधि में रहते हैं, लेकिन समाधि का विषय अलग अलग है सबका। निरंतर हम चिंतन करते रहते हैं। कोई व्यक्ति पैसे कमाने के विषय में चिंतन करते रहते हैं, कोई व्यक्ति खाने के विषय में चिंतन करते रहते हैं, कोई व्यक्ति शरीर के भोग के संभोग के चिंतन में रहते हैं, और कोई व्यक्ति भगवान के चिंतन में रहते हैं, भगवान को प्राप्त करने के चिंतन में रहते हैं। चिंतन सभी लोगों का है, चिंतन का विषय बदलना पड़ेगा, और चिंतन का विषय बदलेगा तो वही समाधि लगेगी हमारी भी। उतनी रुचि होनी चाहिए, उतना आस्वादन होना चाहिए, उतना संग होना चाहिए। ये सब नामुमकिन चीज़ नहीं है। आप लोग कहेंगे अरे महाराज जी, हम लोग अपने सन्यासी महाराज को कहेंगे महाराज आप तो सन्यासी महाराज हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। हम कैसे कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं। ऐसे बहाने बनाने के लिए बहुत लोगों के पास समय होता है, लेकिन गृहस्थी सन्यासी वानप्रस्थी ब्रह्मचारी ऐसा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी वानप्रस्थी इन सबके जीवन का उद्देश्य एक ही है। जो सन्यासी के जीवन का उद्देश्य है वही आपके जीवन का उद्देश्य है, उनके लिए कुछ अलग उद्देश्य नहीं दिया है कि सन्यासी कैटेगरी उनके लिए अलग उद्देश्य है, जीवन का अलग डेस्टिनेशन है, अलग लास्ट स्टॉप है, ऐसा नहीं है। ये बहुत रोचक बात है समझने की। हम लोग बहाना बना के टाल देते हैं कि आप तो सन्यासी हो महाराज, आप तो महाराज हो, आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जितना भगवान की प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य सन्यासी का है, उतना ही भगवान की प्राप्ति ये लक्ष्य हमारा और आपका भी है। चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, ज्ञानी हो, अनपढ़ हो, बीमार हो, आरोग्य संपन्न हो, सुंदर हो, नहीं सुंदर हो, जीवन का लक्ष्य नहीं बदलता है। कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई बहुत एफ्लुएंट है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, और इधर सिंपल व्यक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम क्षण में जब जनाजा उठता है ना, तो यमराज पूछता नहीं है ये प्रधानमंत्री था क्या देश का, इसके लिए अलग कैटेगरी है, उधर से लेके आओ उनको। हर व्यक्ति को जनाजे में चार कंधों पे उठना पड़ता है, और हर व्यक्ति को यहाँ का कोई भी हिसाब किताब वहां देकर इंप्रेस नहीं कर सकते हम। आगे की गति के लिए यहाँ का कोई भी सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत गड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। और मृत्यु की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो सबको देनी पड़ती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसकी तैयारी नहीं करता है। बाकी सारी परीक्षाओं के लिए पूरा यौवन, हाँ जवानी पूरा खत्म कर देते हैं। आजकल हमारी युवा पीढ़ी को देखिए आप, 4-5 घंटा भी सोते नहीं है, दिन रात NET CET क्या क्या पता नहीं एग्जाम देते रहते हैं, और उसके बाद में एडमिशन मिलने के बाद भी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर उसके PG के लिए मेहनत करते हैं। करीब करीब 10 से 15 साल ऐसे भयंकर जीवन बिताते हैं, और फिर वो जो प्राप्त करते हैं उसकी डिग्री पूर्ण करते हैं, उसके बाद भी 12-15 घंटे काम करते हैं, क्योंकि ऐसे स्तर पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे परिवार हैं जो सब ये सब कुछ करके बहुत बढ़िया डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, और उसके बाद उनको अच्छी नौकरी मिली है, बड़े पगार वाली। सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 11:30 बजे घर आते हैं। ना बीवी को मिलना है, ना बच्चों को मिलना है, ना नींद है, ना हेल्थ है, ना कुछ प्राइवेट लाइफ है, ना कुछ प्राइवेसी है, कुछ नहीं है। और ये सारा सब करने के बाद में जब मृत्यु का समय आता है, तो इसमें से कोई भी चीज़ वहाँ पर काम नहीं आने वाली है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये किया किस लिए सब कुछ, वाई वी डिड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जब ये चल रहा है तभी कोई प्रश्न पूछता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, धीरे धीरे वार्धक्य आता है, बीमारी आती है, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में फिर बहुत समय रहता है, उस समय में जोड़ों में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, हार्ट में तकलीफ होती है, तो फिर सारा प्रश्न उठता है कि ये सारा होके फायदा क्या है उसका। फिर परिवार के जन दूर चले जाते हैं, बच्चा कहीं और जगह पर है, हम कहीं और जगह पर है, कोई मिलने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है, फिर सब लोग लोनली हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं, उस समय तक बहुत लेट हो जाता है। फिर बुढ़ापे में कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते, यू कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक। अगर सर्कस में कुत्ते को लेना है तो उसको बचपन देना चाहिए, ताकि सारी ट्रिक सीख सकता है वो, लेकिन बुढ़े कुत्ते को कुछ सिखा नहीं सकते। उसी तरह से अगर हमें लोग योग विद्या निकेतन बैठे हैं, है ना, सदाशिव निंबाड़ करके माता जी के सभागृह में बैठे हुए, तो योग के विषय में योगी जन जो है हिमालय में रहते हैं वो कहते हैं कि योगा इज द वे ऑफ लाइफ, तो वाई वी शुड लर्न द वे ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ लाइफ। योग अगर जीवन पद्धति है तो जीवन की शुरुआत में सीखना चाहिए उसको, ताकि जीवन भर उसको अपनाएं। लेकिन योग पद्धति अगर जीवन पद्धति है तो उसको जीवन के अंत में हम कैसे सीख सकते हैं, और सीखेंगे भी तो कितना सीखेंगे, और सीख जाएंगे तो उसको अपनाएंगे कैसे? हाउ विल यू अप्लाई टू लाइफ? तो योगिनाम अपि सर्वेषां मद भक्ते अंतरात्मना, भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में से जो मुझ में भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। जिन्होंने अर्जुन को सारे योग सिखाए, सारे योगों के बारे में जानकारी दिया, वही भगवान अर्जुन को सब योगों के बारे में समझाते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि इन सारे योगियों में जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये भी बताते हैं कि भक्ति योग सब योगों में आसान है और सब योग में श्रेष्ठ भी है, एक तरह सिंपल भी है, एक तरह से सबसे ऊपर भी है, द बेस्ट ऑफ ऑल योगा। इसलिए अर्जुन, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अभी कौन से योग कौन सी स्थिति में है, कौन सा योग का पोजिशन क्या है, किस योग से क्या प्राप्त होना है, सब मैंने आपको समझा दिया है। अभी आपको चुनना है कौन सा योग अपनाना है। तो अर्जुन ने कौन सा योग अपनाया? अर्जुन ने भक्ति योग अपनाया। अर्जुन पहले बोल रहा था नहीं करना है मुझे, आपको आप जो चाहते हैं मैं नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा निकल के, मैं भीख मांगूंगा जंगल में जाकर, इन सारे परिवारजनों को मारने के बदले में मैं जाकर भीख मांगना पसंद करूंगा, वो हाथ में कमंडल लूंगा, जंगल में भीख मांगूंगा सन्यासी बनकर, लेकिन मैं इन सबको नहीं मारकर मारकर राज्य नहीं करूंगा। अनेक शास्त्रोक्त उदाहरण दिए उसने कि मेरा कहना कैसा सही है, लेकिन अपना ही अनेक कारण देने के बाद में खुद ही कंफ्यूज हो गया वो। शास्त्र के आधार पर बहुत कारण दिए उसने, आप पढ़िए गीता के पहले अध्याय में दिया है सब। वो व्यक्ति खुद के इंटेलिजेंट बुद्धिमान कारण देने के पश्चात खुद ही भ्रमित हो गए और एक स्थिति में आगे बोले शिष्यस्ते हम स्वादि माम ताम प्रपन्नम, अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप मेरे मित्र बनना छोड़ दो, मेरे गुरु बनो, मैं आपका शिष्य बनता हूँ और मैं शरण में आता हूँ आपके, आप बताइए क्या करना है। उसके बाद में गीता शुरू हुई है, तब तक तो अर्जुन ही बोल रहे हैं, भगवान खाली स्माइल दे रहे हैं। जब उसका पात्र था ना वो खाली हो गया ना, तो भगवान को कुछ डालने के लिए मौका मिला उसमें, जब पात्र उसका भरा हुआ तो भगवान स्माइल दे रहे थे, तो पात्र पूरा रीता कर दिया, बोले अभी आप डालो उसके अंदर, तब भगवान ने स्मित हास्य करके बोलना शुरू कर दिया। और क्या सबसे पहले बताया? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। अरे अर्जुन, तुम जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के मन में ये कृपणता के विचार कहां से आए? इतने बड़े आर्य होने पर भी तुम अनार्य कैसे बने? इतने श्रेष्ठ विचार वाले होकर भी ऐसे कर्तव्य से दिग्मूढ़ कैसे हो रहे हो? और फिर आगे सब कुछ वर्णन सुनाया, सारे योगों का वर्णन सुनाया, और सारा सब कुछ सुनाकर एंड में क्या बोला? सर्वधर्मम परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ बताया मैं आपको, लेकिन आपको ये भी सब त्याग करके अंतिम मुझे शरण में आना है, फिर अहम त्वम मैं आपके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो न अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामी, सब पापों से आपको मोक्ष दिला दूंगा, माँ शुचः, आप चिंता मत करना। अब ये सब सुनने के बाद में अर्जुन ने क्या बोला एंड में, जब भगवान की गीता समाप्त हुई, अब अर्जुन ने धन्यवाद दिया उनको, क्या बोला? नष्ट मोहो स्मृतिर्लद्भा करिष्ये वचनम तव। अभी मैं मोह से मुक्त हो गया हूँ, मेरा सारा अंधकार भ्रम नष्ट हो गया है और मैं आपके शरण में आया हूँ, और करिष्ये वचनम तव, जो आप अभी कहेंगे वो मैं करूँगा। इस मुद्दे पर गीता समाप्त होती है और इसी मुद्दे पर भागवत शुरू होता है। इस मुद्दे पर गीता समाप्त होती है और अर्जुन फिर भगवान जो कहते हैं वो करते जाते हैं, विपरीत चीजें भी करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं करो, तो फिर करते जाते हैं, जो आपको इच्छा है वो मैं करूंगा। तो ये जो कार्य है ना अर्जुन का, ये भागवत कार्य है, शरणागति के बाद में किया हुआ कार्य है। और श्रीमद् भागवत में शरणागत भक्तों के जीवन का चरित्र का वर्णन है, जो गीता का सार अपने जीवन में उतार चुके हैं उनका जीवन कैसे था, विविध भक्तों का जीवन विविधतापूर्ण कैसे था, उसी सिद्धांत पर आधारित था, वो सब भागवत में दिया है। इसलिए भागवत जो है वो मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी भेंट है भगवान ने दी हुई। और भागवत में भी कृष्ण चरित्र के पहले सबसे पहले भक्तों का चरित्र का वर्णन आता है, प्रत्यक्ष और डायरेक्ट भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं दिया है। ये भी बहुत सूचक बात है, क्योंकि शरणागति का भाव कैसे होता है और वो भक्त कैसे अपनाते हैं और कैसे वो शरणागति का भाव अपनाकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उसका चरित्र पहले नौ स्कंदों में दिया है। नौ स्कंदों में अनंत कहानियां हैं, प्रहलाद, ध्रुव, कुंती, भीष्मदेव, परीक्षित महाराज, भगवान के अवतार परशुराम, राम, नरसिंह, कितने सारे अवतारों के वर्णन भी है और कितने सारे भक्तों के चरित्र भी वहाँ पर, बलि महाराज, वामन देव, पांडव, अनंत वर्णन है। और ये सब वर्णन सुनने के पश्चात जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान का चरित्र आरंभ होता है दशम स्कंद में, और उसमें 79 अध्याय हैं भगवान के अवतार से भगवान के अंतर्धान होने तक। उसमें एक और एक गीता है, उसका नाम है उद्धव गीता। भगवान जब गीता कहने के लिए खड़े थे महाभारत के युद्ध भूमि पर, तो बहुत कम समय था ना, दोनों तन के खड़े थे अभी, कभी शुरू करना है, बहुत कम समय था, उसमें कम समय में समझाया उन्होंने उनको। लेकिन उद्धव जी को वही बातें समझाई है, लेकिन तब कोई टेंशन नहीं था, कोई समय की पाबंदी नहीं थी, उन्होंने आराम से सुनाया उनको। तो 11वें संध में वो उद्धव गीता का वर्णन आता है, बहुत सुंदर, जो भगवत गीता में दिया है उसी दूसरी भाषा में दूसरे प्रश्नों में उनका उत्तर दिया है, लेकिन सार वही है उसका, लेकिन विस्तारपूर्वक दिया है, समय के साथ आराम से दिया है। और 12वें स्कंद में श्रीमद् भगवद गीता में कलयुग का वर्णन दिया है, जिस महान युग में हम सब लोग जी रहे हैं उस युग के बारे में बहुत तंतोतंत वर्णन दिया है। आप पढ़ेंगे ना आप दंग रह जाएंगे, जो जो आज हो रहा है ना वो सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्त्रियां अपने बालों को छोटा छोटा करते जाएंगी और पुरुष अपने बालों को लंबा लंबा करते जाएंगे, एक भागवत में दिया है, उसी को शोभा समझेंगे, सौंदर्य की शोभा समझेंगे। आजकल के जमाने में तो पीछे से आप देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आता कि औरत है कि आदमी है, ये कलयुग का वर्णन दिया हुआ है उसके अंदर। आजकल जो चलता है ना ड्रग एडिक्शन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, अफीम और क्या क्या लोग पीते हैं, मेड्रेक्स, कंपोज, बहुत सारी गोलियां खाते हैं, बहुत सारा दवा करते हैं, ड्रग लेते हैं, उसका वर्णन भागवत में दिया है। रसायनों की नशा करेंगे, ये वर्णन दिया है उसके अंदर। एक बहुत अद्भुत बात भागवत में कही है, मुझे जब पहली बार पढ़ा था ना मैं, बहुत तभी विद्यार्थी था मेडिकल में, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ इस बात पर, ऐसे कैसे हो सकता है। उसमें लिखा है कि माता कलयुग में अपने बच्चे का वध करेगी, ये कैसे हो सकता है, माता तो कितना प्रेम करती है बच्चे पर। फिर ध्यान में आया कि वो गर्भपात करती है स्वार्थ के लिए, तो माता अपने बच्चे का वध कर रही कि नहीं कर रही, जीवंत बालक का वध कर रही है किसी बेकार कारण के लिए, फालतू कारण के लिए, कि पैसे नहीं है, हाँ देखने के लिए कोई नहीं है, या करियर है, फिल्म में कुछ काम करना है, या तो MBBS MD करना है, उसकी एग्जाम देनी है। कुछ लोग बोलते कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तो 5 साल तो एंजॉय करना है, अभी प्रेगनेंसी बीच में आ गई है, कैसे करना है, नहीं चाहिए। ऐसे स्वार्थी कारण के वजह से माँ और पिताजी मिलकर, परिवार मिलकर बालक की हत्या कर देते, ये भागवत जी में लिखा है। और आजकल तो वो कॉमन हो गया, इसमें क्या है बड़ी बात है, फैमिली प्लानिंग इस हिसाब से वो लीगलाइज कर दिया उसको, जो एक महत पाप था और है, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 1964 में कायदा बना दिया, बोले खुलेआम करो, कोई चिंता नहीं करना, भारत की संख्या बढ़ रही है, कम करो उसको। अभी लोगों को फ्री देते हैं गर्भ निरोधक चीज़ें, ये सब कलयुग का लक्षण है। पुराने जमाने में गर्भपात किए हुए परिवार को गांव के हद के बाहर कर देते थे, उसके घर का पानी भी कोई पीते नहीं थे, और आज तो हर घर में किसी न किसी ने गर्भपात किया हुआ है। इस सम से हमको बचना है, क्योंकि जो इस प्रकार के पाप करता है उसके घर में कभी शांति नहीं हो सकती है, कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आप कितना भी धन कमाओ, कितने भी समृद्ध बनो, मन की शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। किसी के जीवन में मृत्यु की तबाही लाकर आप अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। वो भी एक असहाय बालक जो आपके गर्भ में स्थित है, उसकी स्वार्थ के लिए हत्या करके, अपने आराम के लिए, सुकून के लिए, स्वार्थ के लिए अगर आप वो कार्य करते हैं तो कैसे शांति मिलेगी। इस जन्म में सब लोग अपने अपने किए का भोगते रहते हैं और दूसरे को दोष देते रहते हैं, लेकिन सब लोग केवल अपने ही कर्मों का भोग भोगते रहते हैं, और ये सब भागवत में वर्णन दिया है। और इस कलयुग के प्रभाव से बचना है तो उसका उपाय भी दिया है। कलिर दोषेर निधेर राजन अस्ति यो को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इनसे आपको बचना है, इनके बीच में आप रह रहे हो, इस काल के प्रभाव में रह रहे हो। हाँ देखो, सत्संग में हम लोग आते हैं, लेकिन सत्संग के वस्त्र पहन के आते हैं क्या? भगवान के विषय में संग करने के लिए आते हैं, लेकिन मॉडर्न ड्रेस पहन के आते हैं, है ना? ये भी कलयुग का प्रभाव है। अगर पुलिस में काम कर रहे हैं तो पुलिस की वर्दी पहनते हैं ना आप लोग, तो पुलिस को भी अपना अगर रोब दिखाना है तो वर्दी की जरूरत होती कि नहीं? अगर वो बिना ड्रेस का आएगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं, तो गाली देके निकाल देगा उसको। वर्दी पहन के आएगा तो उसको हाथ लगाने लोग डरेंगे। तो वैसे ही भक्तों का भी एक गणवेश होता है। एनीवे, कहने का तात्पर्य क्या है, ये कलयुग का सा प्रभाव हमारे जीवन में हम भक्त होते हुए भी धीरे 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 सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर रहा है, और उसके बचने के लिए भगवान कहते हैं कि एक ही गुण है कलयुग में, दोषों के सागर के बीच में एक ऐसा महान गुण है, अस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। भगवान के नाम का जो गुणगान करेगा, कीर्तन करेगा, जप करेगा, वो इस कली के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे आप अभी निपा वायरस के वातावरण में जी रहे हो ना, तभी वो स्वाइन फ्लू भी आया था बीच में, और आप लोग सब लोग जिस भी जी रहे हो, तो फिर क्या आता है उसका वैक्सीन, कि वो लोगे और उस एरिया में जाओगे फिर भी आपको वो रोग नहीं होगा। ऐसा करते हैं ना आप लोग, पुराने जमाने में टाइफॉइड की भी, कोलेरा की भी वैक्सीन होती थी। कहीं जाना है घूमने के लिए तो उसके पहले टाइफॉइड कैजरा का, कोलेरा का लस हम लेते थे। क्यों क्यों लेते थे? कि जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर पानी पीने से टाइफाइड हो सकता है, तो ये लस लेंगे तो टाइफाइड के जंतु जाएंगे फिर भी टाइफाइड नहीं होगा। कॉमन सेंस है ना ये। उसी प्रकार से कलयुग के भाव रोग के इलाके में आप घूम रहे हो और कलयुग का परिणाम आप पर होगा, और उससे आपको बचना है तो क्या करना है? हरिनाम का आश्रय लेना है। तो ये कलयुग का वैक्सीन है कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए। हरि का नाम, नाम रूप लीला धाम, हरि और उनके नाम रूप लीला धाम, ये चार चीजें कलयुग की वैक्सीन है। भगवान का नाम, भगवान का रूप यानी विग्रह, इसमें फोटो रखे हैं लेकिन ये विग्रह भी हैं पुना में मंदिर में, तो भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं, षोडशोपचार के साथ पूजा करते हैं, अर्चना विधि अपनाते हैं, नाम का जप करते हैं, और नाम रूप लीला अभी हम लोग 3 दिन से सुन रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और चौथा है धाम, भगवान का जगह भी है ना। जैसे आप लोग बद्रीनाथ जा रहे हो, वृंदावन जाते हैं हम लोग, और कहीं जाते हैं उत्तरकाशी, गंगोत्री, जमुनोत्री, भगवान ने जहाँ लीला किया है वहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ कुछ दिन बिताते हैं। क्या करने बिताते हैं? वही मोबाइल में मूवी देखने आएगा वहाँ जाके, वही मोबाइल के लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी किधर जा रहा है, वो वहाँ जाकर नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर सब कुछ छोड़कर, सब दुकान बंद, फिर केवल भगवान में रत रहना है, उनके नाम का जप करना है, उनके बारे में कथा सुनना है, उनके पवित्र नदी में स्नान करना है, धाम का दर्शन करना है, उसी भाव में 2, 4, 15 दिन जितने भी मुमकिन है उतने रहना है, और आत्मा को शुद्ध करके फिर लौट के आना है, और फिर घर में आके वही टीवी देखना है ना। मतलब हाथी कैसे होता है, वो जाके नदी में स्नान करता है, पूरा एकदम चक्का चक स्नान कर देता है, और स्नान खत्म हो गया तो मट्टी लेता है, पूरे शरीर में डाल देता है, और फिर चलता है अपने काम करने के लिए। उसको कहते हैं कुंजर स्नान। वैसे नहीं करना है। धाम में क्यों जाते हैं? अरे कोई अच्छा पुण्य कार्य होना चाहिए, बहुत सारा पाप कर लिया, चलो पुण्य भी कर लेते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है धाम की यात्रा। धाम की यात्रा उसके लिए करते हैं कि हमने जो भी गलती से पाप किया, जानबूझकर नहीं किया है, उसको स्वच्छ करके फिर धाम में जाकर जो परिपूर्णता शुद्धि प्राप्त करते हैं, उसी तरह जीवन बिताने के लिए धाम की यात्रा करते हैं। वो बीच में कोई रिक्रिएशन नहीं है हमारा, वो जिंदगी कॉमन है, बीच में रिक्रिएशन है, एक धाम का हरिद्वार, एक वृंदावन, एक श्रीरंगा क्षेत्र, ऐसा नहीं है। बड़ा विधि विधान है उसके लिए, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है वो। चलो बोर हो गए बहुत बैंक में और ऑफिस में और हॉस्पिटल में काम करके, इतने परेशान हो गए, अभी एक ब्रेक चाहिए, चलो बद्रीनाथ जाके आते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बद्रीनाथ जाके ठंड का अनुभव करके आए, बर्फ देख के आते हैं, उसके लिए जाते नहीं वहाँ पर। बाय द वे आपको बर्फ भी मिलेगा, ठंड का भी आनंद मिलेगा, सब मिलेगा, अच्छे वातावरण का घर, हरियाली मिलेगी, सब मिलेगा, रिक्रिएशन मिलेगा, रिज्यूवनेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम नहीं जा रहे वहाँ पर, उसके भगवान को मिलने जा रहे हैं, भगवान के विषय में संग करने जा रहे हैं, साधुओं के संग में बैठने के लिए जा रहे हैं, उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, धाम के जो देवता है उनके शरण लेने जा रहे हैं, उनको हमारे जीवन के मालिक बनाने के लिए जा रहे हैं, टू सबमिट अवर सेल्फ। तो यह मनुष्य जीवन का मूल अंग है, नाम रूप लीला धाम में अपने आप को अर्पित करना। हम लोग कैसे करेंगे, अभी बहुत बिजी है हम लोग, देखो इतना काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद 2 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है, फिर डब्बा बनाना पड़ता है, फिर आके फिर थक जाते हैं, फिर वीकेंड में क्या थक जाते हैं, सो जाते हैं, कैसे करेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे हम। लेकिन इतना बिजी होने पर भी हम 3 बार खाते हैं ना, आधा पौना घंटा बाथरूम बिताते कि नहीं बिताते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बिजी है, कलयुग में कौन बिजी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उठते ही पहले ही पहले प्रवचन ऑन करते हैं, कुछ भी करने के पहले पहले वो मोबाइल के अंदर या किसी प्लेयर के अंदर प्रवचन ऑन करते हैं, उसको लेकर बाथरूम में जाते हैं, उसको ऑन रखते हैं, फिर ब्रशिंग चालू कर देते हैं, जितना समय उसको लगता है शरीर को शुद्ध करने के लिए उसमें 2 प्रवचन सुन लेते हैं, फिर प्रवचन आधा रह गया तो उसी को लेकर कमरे में जाते हैं, फिर जब कपड़े बदले कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तब तक वो सुनते हैं, फिर जब ब्रेकफास्ट का समय आता है फिर प्रवचन ऑन करते हैं, फिर पति पत्नी मिलकर प्रवचन सुनते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते चले जाते हैं। समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम अभी क्या करते हैं, हम लोग उठते ही पहला मोबाइल देखते हैं, कितने मैसेज आए हैं, कौन सा नया फिल्म आया है, कौन सा नया वीडियो आया है, पहले देखते हैं, उसके बाद जब ब्रेकफास्ट करें तो भी उसको देखते रहते हैं, लंच करें तो भी उसको देखते रहते हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सब लोग 1-2 घंटा सफ़र कर रहे हैं, सब लोग कान में कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवी देख रहे हैं, 5 बजे सेक्सी मूवी देख रहे हैं ट्रेन में, वो भी अपने समय का इस्तेमाल कर रहे हैं गलत चीज़ों में, और उसी समय हम अपने चीज़ों का उपयोग, समय का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, लोग बहुत बहाने बताते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं, उसका समय ही नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो। ट्रेन में लोग बैठे हैं 24 घंटा यात्रा कर रहे हैं, 24 आवर्स का सफ़र है, अमृतसर का 30 घंटे का सफ़र है, 44 आवर का सफ़र है, और आप उनको बोलिए आप भगवान के नाम का जप नहीं करते, समय ही नहीं मिलता है, और ट्रेन में बैठे हैं अभी टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिलता है क्योंकि वो खुद को ही चीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली सबके पास समय होता है, भगवान ने सबको समय दिया है, प्रधानमंत्री को 48 आवर्स नहीं दिए हैं और आपको 12 घंटे नहीं दिए हैं, सबको 24 घंटे दिए हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ में है, और भगवान बता रहे हैं कि वो समय का इस्तेमाल मेरे चिंतन में करना चाहिए, तब मैं आपका हो जाऊंगा। इसलिए ये सारा प्रयोजन है, तो इतनी दूर यात्रा करके आपका भी संडे का समय है, आपको भी सो सकते हैं घर में, टीवी देख सकते हैं, कोई ट्रायंगुलर सीरीज देख सकते हैं, क्या हुआ सनसनी केज, हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट होते हैं ना तो फिर बोलते हैं कि वो शनिवार को 6 बजे पहले डिस्चार्ज करो मुझे, क्योंकि 7 बजे का सीरियल मैंने बहुत दिन से मिस किया, अभी उसमें क्या हुआ देखना पड़ेगा मुझे, अपडेट लेकर आगे का देखना है, तो हो सके तो 6 बजे के पहले डिस्चार्ज कर दो। ऐसे लोगों की चेतना हो गई है, सब जगह पर इस प्रकार का विचार चलते रहता है कि भगवान का विचार कैसे हो सकता है उस जगह पर। उस स्थिति में हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक मास के बारे में सब लोग अवगत हो जाएं और जीवन के उद्देश्य को समझें, और कैसे समझें कि कितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं जिंदगी का, और फिर रिटायर होने के पहले 1 साल भर टेंशन रहते हैं कि अभी क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वे 8-12 घंटे फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो बहुत लोग सोते रहते हैं क्या करेंगे, क्योंकि तो जो आदतें पहले से बनी हुई है उसी को हम रिटायर होने के बाद में अपना सकते हैं। आप कहेंगे कि रिटायर हो जाऊंगा ना मैं 8 घंटे मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें सब पढ़ूंगा, 8 घंटे दिन में पढ़ूंगा, मेरी सब जमा करके रखा हुआ है। लेकिन आज आपको आधा घंटा पढ़ने की अभ्यास नहीं है तो आप आधा घंटा कोई कुछ पढ़ नहीं सकते, 8 घंटा तो भूल ही जाओ। आपको जो करना है उसका अभ्यास शुरू से करना पड़ता है, जो आपको अचीव करना है शुरू से उसमें मन लगाना पड़ता है। आप 55 ईयर्स के एज में MBBS हो सकते हैं क्या? एडमिशन लेके मिल भी जाती तो भी आप कर नहीं सकते, क्योंकि अभी समय गया उसका। जो बचपन से करते आ रहे हैं, जिसमें आपने मन लगाया है यौवन अवस्था से, उसी चीज को आप बुढ़ापे में कर सकते हैं। जीवन भर गॉसिप किया है तो रिटायर होने के बाद गॉसिप ही करेंगे। जीवन भर किसी का निंदा नेगेटिव बात किया है तो रिटायर होने के बाद बहुत समय मिलेगा तो वही करते रहेंगे। और जीवन भर भगवान का भजन किया है, उसमें मन लगाया है, तो आपके लिए फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको इतना समय मिलेगा कि आप उसी में लगे रहेंगे और जीवन धन्य होगा आपका। इसलिए सब प्रयास है। संडे शाम को 3-3 घंटे बैठकर हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण से ही जीवन के कल्याण का मार्ग खुल जाता है। सुनने से ही हम सीखते हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है लाइफ में। इसलिए भगवान आते हैं, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, उनके धाम में उनके बहुत यहाँ से करोड़ों गुना नंबर वाले भक्त वहाँ रहते हैं और इतना निरपेक्ष प्रेम करते हैं भगवान पर, निस्वार्थ निरपेक्ष प्रेम करते हैं। तो भगवान को यहाँ आने कोई जरूरत नहीं, जहाँ पर लोग उनको चाहते नहीं है, उनका भजन नहीं करते हैं, उन पर श्रद्धा रखते नहीं है और डाउट करते हैं गॉड है कि नहीं है ऐसा पूछते रहते हैं, उनके बीच बार बार भगवान आते हैं। करुणा की वजह से आते हैं, दया की वजह से आते हैं और यहाँ आकर लीला करते हैं और उनको आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कितने दयालु है भगवान, यहाँ पर आकर ऐसा शो करते हैं कि आप आकर्षित हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं और दोबारा उनके पास लौट से चले जाएं। तो उसमें वो वृंदावन में आते हैं, बद्रीनाथ में आते हैं, द्वारका में आते हैं, जगन्नाथपुरी में आते हैं, श्रीरंगनाथ में आते हैं, अयोध्या में आते हैं, सब जगह आकर अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से लीला करते हैं। सिंगाचलम में जाते हैं, वहाँ नरसिंह भगवान की लीला करते हैं, तिरुपति में श्रीनिवास की लीला करते हैं, रंगनाथ के रूप में लीला करते हैं नीचे साउथ इंडिया में। भारत इतना महान देश है, कर्ण कर्ण पे यहाँ पर लीला है भगवान की, कितने पवित्र स्थान हैं, कितने टाइप्स है भगवान के, कितने रूप हैं, कितनी लीलाएं हैं, जो आपको चॉइस कभी बोर नहीं होगा आपको, ऐसी वेराइटी है इसके अंदर। तो श्री वृंदावन धाम उसमें से एक धाम है, जो भगवान का कहते हैं निज धाम है, घर है उनका, वो कुछ घूमने की जगह है उनकी और कुछ उनका निजी घर है, वैसे वृंदावन है। और कहते हैं कि 14 भुवन जो है ना, ब्रह्मा लोक से लेकर पाताल लोक तक, उसमें पृथ्वी लोक भगवान को बड़ा पसंद है। कारण क्या है उसका, किसी को पता है पृथ्वी लोक में इतना ऐसा क्या है तो भगवान को इतना पसंद है? अगर आपके पास 14 मंजिल की बिल्डिंग है और एक ग्राउंड फ्लोर है और अंडरग्राउंड भी 2 फ्लोर है बेसमेंट, और आप 14वें मंजिल में हो और आपकी बिल्डिंग के बाहर जाना है तो कहाँ से बाहर निकलोगे आप? ऊपर से कूदेंगे क्या 14 माले से? आपको अर्जेंट जाना है इसलिए आप वहीं से जंप मार देते हो, ऐसा होता है? कुछ भी कितना भी अर्जेंट हो आपको ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से ही उस बिल्डिंग के बाहर जाने का रास्ता है। और आप दूसरे बेसमेंट में हो तो आपको बाहर निकलना तो कहाँ जाएंगे आप? ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। यहाँ से अमेरिका जाना है तो कहाँ जाएंगे आप? सेंटा क्रूज जाएंगे, हाँ अंधेरी जाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे। यहाँ से बाहर देश जाने के लिए एक ही रास्ता है, एयरपोर्ट। उसी तरह से पृथ्वी है, आप स्वर्ग में जाइए या नरक में जाइए, मुक्ति का मार्ग पृथ्वी से निकलता है। इस लोकों से बाहर निकलना है तो आपको पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। पृथ्वी लोक का जो जीवन है, हम लोग का, आप लोग का, सब लोग का जीवन जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। क्यों ऐसे? क्योंकि इसमें सुख और दुख का ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखा है कि भगवान की याद सुलभता से आ सकती है। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आयोड़े, ऐसा इंतजाम यहाँ बना के रखा है, स्ट्रैटेजिकली योजनाबद्ध रीति से करके रखा है। इसका मतलब क्या होता है, जब सुख, सुख की व्याख्या क्या होती है यहाँ पर, जब दुख नहीं होता है तो उसको सुख कहते हैं। एब्सेंस ऑफ मिजरीज इज इक्वल टू हैप्पीनेस, लेकिन वो सही हैप्पीनेस नहीं है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तुकाराम महाराज बताते हैं कि ये जग की व्यवस्था ऐसे करके रखी है पृथ्वी लोक की, बहुत सारे दुख हैं थोड़ा बीच में सुख का अनुभव होता है, जब दुख का अभाव होता है, तो भगवान को याद करने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। ऊपर क्या होता है, बहुत सारे दुख होते हैं, हाँ सुख पर्वता एवडे, और दुख नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है ही नहीं, शायद बहुत कम है, वहां पर भी दुख है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो जहाँ बहुत सुख होते हैं उच्च मात्रा में, वहां पर भगवान की याद आसानी से नहीं आती है, जरूरी क्या आसान याद करने की, इतना सारा सुख मिल रहा है तो तकलीफ ही नहीं कुछ। और नीचे नरक में इतने दुख होते हैं, इतने दुख होते हैं, इतने दुख होते हैं, यातना शरीर होता है वहां पर, अलग शरीर होता है, उसमें सुख के 9 टर्मिनल्स होते ही नहीं है, 9 रिसेप्टर्स फॉर हैप्पीनेस, ओनली दर्द दर्द और दर्द होता है उसके अंदर। वहां पर होता है भोग शरीर, यहां पर नीचे होता है यातना शरीर, और बीच में होता है मिक्सचर। तो वहां पर भी भगवान की याद नहीं आ सकती, यहां पर आ सकती है, इसलिए पृथ्वी लोक बहुत श्रेष्ठ माना गया है। उस पृथ्वी लोक पर भगवान को भारतवर्ष बहुत प्रिय है, क्योंकि विश्व में जितनी नदियां हैं, उस सभी नदियों का अधिकतर संख्या में नदियां भारत में, और भगवान इतना चाहते हैं इस देश को कि इस देश में देखिए आप कितने अवतार नहीं हुए, बताओ आप विदेश में कितने भगवान के अवतार हुए, बताओ इंग्लैंड में अमेरिका में कोई भगवान के अवतार हुए क्या? एक भगवान के दूत आए थे यूरोप में, और एक आए थे बीच में आखाती देश में, लेकिन भगवान स्वयं अनंत अवतार धारण करके किस देश में आए हैं बताइए, तो भारत देश में आए। तो यहाँ की भूमि जो है ना, वो कण कण जो है भगवान के चरणों से पवित्र हो गई है, भगवान ने इस भूमि में आकर लीला किया है। उस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के धाम तीर्थ उपस्थित हैं, हमारा इतना भाग्य है, ऐसे कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पुण्य करने के बजाय भारत भूमि में जन्म नहीं हो सकता है, और हम लोगों ने भारत भूमि में ऑलरेडी जन्म प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने शायद पुराने जन्मों में पर्याप्त पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। यहाँ पर भगवत श्रद्धा प्राप्त करना बड़ा आसान है, टू बी अथीस्टिक पर्सन, भगवान में विश्वास करने वाले होना यहाँ पर बड़ा नेचुरल है। विदेश में प्रश्न करते बार बार भगवान है कि नहीं है, और अधिकतर बोलते नहीं है, ये सब विदेश में चलता है। जो प्रगत 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 देश बोलते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा अधिष्ठान क्या है, भगवान के अस्तित्व का ना होना और हम नास्तिक होना, यही गर्व की बात है वहां पर, वी डोंट बिलीव इन गॉड, ये वहां का अधिष्ठान है। और भगवान का सहजता से अस्तित्व स्वीकार करना इस देश का स्थायी भाव है, नेचुरली वी एक्सेप्ट गॉड इज देयर। रिक्शा वाला भी बोलेगा आपको, गीता का सिद्धांत बताएगा, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, और जब आपको मथुरा से वृंदावन ले जाएगा ना, उस तब तो आपको समझा देगा पूरा 3रा अध्याय। रिक्शा वाला भी जो अनपढ़ लगता है आपको, स्कूल में भी नहीं गया है, लेकिन कर्म का सिद्धांत आपको बताएगा बराबर से। अमेरिका में नहीं होगा ऐसे, इंग्लैंड में नहीं होगा। तो भारतवर्ष में भी भगवान को श्री वृंदावन धाम बहुत प्रिय है, और वो ऐसा धाम है जहाँ पर भगवान अपना भगवान होना ये छोड़कर वहाँ पर आते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में, बाकी जो द्वारका है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है, श्रीरंगम है, अयोध्या है, और कितने क्षेत्र हैं, सब जगह ऐसे ऐश्वर्य में रहते हों, बड़े शान से रहते हैं, देखो तिरुपति में कैसे रहते हैं, है ना, इतना ऐश्वर्य है उनके पास। तो लेकिन वो सब परेशान हो जाते हैं खुद भी, इतना ऐश्वर्य का अनुभव करते करते फिर सोचते हैं कि अभी ऐसी जगह जाना चाहिए जैसे कोई मुझे पहचान ही नहीं भगवान हूँ, तो वृंदावन में अपनी भगवत्ता को छोड़कर आते हैं, नंगे पैर आते हैं, मुकुट धारण नहीं करते हैं, अलंकार धारण नहीं करते हैं, वनमाला पहनते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। तो ये वृंदावन धाम भगवान का घर है, भगवान अपने घर में आते हैं। जैसे आप लोग अगर अपने गांव में चले गए तो आपको क्या आ जाता है, अरे यहाँ पर मैं गोटी खेला था, यहाँ पर मैं कुएं में छलांग लगाता था तैरने के लिए, नदी में कूदता था, इधर मैं एक बार गेंद गई थी जब मैं नदी में, तो हम लोग ने स्विमिंग करके गेंद निकाली थी, ऐसे याद करते हैं ना गाँव में जाके, जब मैं कॉलेज में था तभी गाँव आया था एक बार, तो ऐसे ऐसे हुआ था, 28 मंदिर में गया था 8 दिन में, मैं हवाई जहाज से पहली बार गाँव गया था, ऐसे याद करते कि नहीं हमारी पुरानी बातें। तो वैसे भगवान अपने घर जाते हैं वृंदावन में, और अपना ऐसा कार्य करते हैं जो वैकुंठ में भी नहीं करते, बच्चा बनकर रेंगते हैं मां की गोद में। मूर्तिमान भय जिससे भयभीत है वो भगवान बालक बनकर बादल की गड़गड़ाहट सुनकर मां के गोद में डर के जाते हैं, मैया डर लग रहा है मुझे, ते बादल आ रहे हैं, कौन है ये? तो मैं बोलते डरना नहीं बेटा, डरना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। वो स्तनपान कराती है उसको, तो वो निश्चिंत होकर सो जाता है। ऐसे चटपटी लीला भगवान करते हैं सब कुछ भूलकर। तो वो वृंदावन धाम जो है ना, उसमें अनंत वन है जिसमें भगवान ने लीला किया है, अलग अलग प्रकार का लीला किया है। फॉर एग्जाम्पल गाय चारण गौचारण किया है, बाल लीला किया है, बछड़ों को चराया है, बड़ी गायों को चराया है, मुरली बजाया है, रास डांस किया है, राक्षसों को मारा है, गोवर्धन को उठाया है, होली खेली है उन्होंने, हाँ अलग अलग प्रकार का लीला किया है, अलग अलग प्रकार। और जितने वन है उस हर वन में एक स्टोर हाउस है जहाँ पर सब साधन रखा हुआ है, आज क्या लीला करना है और क्या क्या साधन चाहिए, उसका पूरा स्टॉक है। वृंदा देवी उसकी इंचार्ज है, और वृंदा देवी के नेतृत्व में आज कहाँ लीला होने वाली है उसका पूरा आयोजन होता है। उस प्रकार से श्रृंगार होता है भगवान का, उस प्रकार से ड्रेस पहनते हैं, उस रंग का ड्रेस पहनते हैं कि आज हरे रंग का श्रृंगार करना है, तो सब कुछ हरे रंग का होता है। सब खबर होती है उनके पास, आज कौन से फूल कहाँ खिले हुए हैं, उधर कौन से वस्त्र पहनने हैं, और कौन सा लीला करना है, कौन सा राग में गाना है, कौन सा नृत्य करना है, कौन से गीत गाना है, कौन से भोजन बनाना है, और क्या करना है, उसका पूरा सिस्टमेटिक आयोजन होता है और भगवान लीला करते हैं। उन सारे अनंत वनों में से भगवान को 108 वन बहुत ज्यादा प्रिय है, और उन 108 में से भी 12 वन बहुत ज्यादा प्रिय है, होता ना ग्रेडेशन। तो वो 12 वन जो है उसमें 7 वन यमुना जी के उत्तर दिशा में है और 5 वन यमुना जी के पश्चिम दक्षिण दिशा में है, बीच में यमुना बहती है ब्रज में। और उन 12 वनों में भगवान को श्री वृंदावन बहुत पसंद है, सबसे अधिक पसंद है। तो वो वृंदावन जो है वो 20 कोस का है, पूरा ब्रज भूमि जो है 84 कोस का है, और 20 कोस का उसमें वृंदावन है। और उस वृंदावन में क्या क्या समाया हुआ है, वृंदावन है, नंदगांव है, बरसाना है, और जावट है, और गोवर्धन भी है उसके अंदर, ये सब मिलकर वृंदावन बनता है। आज के ज्योग्राफिकल दृष्टि से पिन कोड देखेंगे तो वृंदावन एक जगह पर है, मथुरा से 11 किलोमीटर दूर है, वहीं पर वृंदावन सिटी टाउनशिप है। लेकिन पौराणिक वृंदावन जो है उसमें आज का वृंदावन भी सम्मिलित है, पूरा गोवर्धन का एरिया भी सम्मिलित है, नंदगांव बरसाना भी सम्मिलित है, और राधा रानी का ससुराल है एक जावट, वो भी सम्मिलित है। तो वृंदावन में भगवान के चरणों का रज लेने के लिए सारे देवता ऋषिगण आते हैं। क्यों वृंदावन में आते हैं, मैंने आपको पहले इस रहस्य को बताया था, किसको याद है? क्या भगवान के चरण के रज और कहीं अवेलेबल नहीं, क्या केवल वृंदावन में है? और है तो क्यों है, किसी को याद है? हाँ हाँ, वृंदावन में भगवान के चप्पल की दुकान नहीं है, सॉरी टू से। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी भगवान के धाम हैं, अयोध्या है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, श्रीरंग क्षेत्र है, सब जगह भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं, और जमीन पर बिना चप्पल या मखमली वादत्राण पहने बिना जमीन पर चलते नहीं है। लेकिन एक वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ पर भगवान पैर में चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं। तो यहाँ के कण कण के भूमि पर, कण कण के रज पर भगवान का स्पर्श है। तो सच में अगर भगवान के चरण रज चाहिए आपको तो वृंदावन में मिलेगी, क्योंकि बाकी जगह तो मौका ही नहीं भगवान को जमीन पर पैर रखने का, सब जगह मखमल लगा हुआ है, और ऊपर से भगवान चप्पल भी पहनते हैं, रत्नों से और मणियों से बना हुआ चप्पल पहनते हैं। सब लोग उनकी रज लेने के लिए वृंदावन में आते हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी से लेकर सब देवता, सारे ऋषिगण नारद मुनि से लेकर जितने भी ऋषि हैं, सब लोग वहाँ पर चरण रज प्राप्त करने के लिए आते हैं। और चरण रज का महत्व क्या है, चरण रज में भगवान की सारी कृपा समाई हुई है, इसलिए हम लोग उसको अपने शीश पर लगाते हैं। उस रज का स्पर्श करने से रजोभिषेकम, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जो वृंदावन में सारे ऋषिगण देवतागण आते हैं भगवान के चरणों का रज लेने के लिए, वो भगवान भी कहीं जाते हैं किसी के रज लेने के लिए। जिनकी रज प्राप्त करने के लिए सब लोग वृंदावन में आते हैं, वो एक जगह है जिसका नाम है बरसाना। बरसाना किस जगह का नाम है? जहाँ पर राधा रानी का घर है। और राधा रानी का घर, वहाँ पर उनका पिताजी का घर है, उनकी बहन है, भाई है, माता पिता रहते हैं, और राधा रानी कृष्ण का सर्वस्व है। साक्षात भक्ति जो है वो मूर्तिमान स्वरूप में राधा रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। भगवान भी राधा रानी को निर्माण करते हैं, उनको निर्माण करने वाले वही स्वयं हैं। लेकिन जब भगवान के अंदर की भक्ति का जो अंग है वो राधा रानी के रूप में प्रकट होता है, तो भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति ऐसी प्रक्रिया है कि उससे केवल भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान आपके हो जाते हैं, भगवान आपके वश में हो जाते हैं। यहाँ तक कि भक्ति करने से भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। दास बने कि नहीं भगवान? जब अर्जुन के सारथी बने, ड्राइवर बने, तो सेवक बने कि नहीं अर्जुन के? वो भगवान को सेवक बनाने के लिए भक्ति नहीं करनी है, लेकिन भगवान स्वेच्छा से बन जाते हैं। अर्जुन के वो दास बने, आप लोगों को आइडिया नहीं है क्योंकि आपने कभी रथ में कोई यात्रा नहीं किया है। हमारे पास तो गाड़ी है, कार, हम ड्राइवर को रखते हैं। कभी ड्राइवर को मारते क्या हम लोग? पैर से, हाथ से मारते क्या? नहीं मारते। लेकिन रथ में जब जाता है ना आदमी युद्ध में, तो इतना कोलाहल होता है, इतना शोर होता है वहाँ पर। कोई हाथी चीखा चीख रहा है, कोई घोड़ा चीख रहा है, कोई मरने वाला चीख रहा है, कोई योद्धा गर्जना कर रहा है, कोई शस्त्र की खनखनाहट का आवाज़ आ रहा है, गदाओं का आवाज़ आ रहा है। उसमें कोई बात करने का सवाल नहीं है, आप बात नहीं कर सकते इतनी शोर में। तो जो रथी है ना, रथी वो ना सारथी को ऐसे लात मारता है। जब बीच में लात मारेगा तो रथ सीधे लेके जाएगा वो, जब राइट साइड में पीठ पे लात मारेगा तो राइट में टर्न करेगा, जब लेफ्ट में मारेगा तो लेफ्ट टर्न करेगा। और कोई तरीका ही नहीं है, कोई चिल्ला के भी आप सुनाई नहीं पड़ सकते। ये हर सारथी का काम है, उसको उसी तरह से दिशा मिलती है, क्योंकि वो आगे बढ़ना है। वो पीछे मुड़कर पूछेगा नहीं, साहब कहाँ टर्न करो, राइट को लेफ्ट टर्न करो, तब तक कोई बाण लगेगा तो कैसे चलेगा, तो आगे देखना है। इतना भयंकर घनघोर कार्य होता है युद्ध में। तो भगवान ने 18 दिन तक अपने प्रिय भक्त अर्जुन के लत्ता प्रहार का आघात सहन किया। ये कहीं वर्णन नहीं आया उसका, लेकिन सारथी बनने का मतलब ही है। जैसे हमारा ड्राइवर कैसे रहता है, फिर जाके गाड़ी में ऑयल भरता है, हवा भरता है, सर्विसिंग करके लेके आता है ना, कभी टायर पंक्चर निकालता है, वो काम है उसका। तो भगवान ने भी बीच युद्ध में रथ को रुकाया, उसमें तेल डाला, उसको साफ किया, घोड़ों के पैरों को मसाज किया, घोड़ों को चारा खिलाया, वो हमारा सर्विसिंग ही है। वो भगवान ने अपने अर्जुन के लिए किया वो, और साथ साथ उसको निर्देश भी दिया। तो कर्ण ने बाण मारा तो वो अर्जुन मरने वाले थे, तो एक क्षण के अंदर अपना जो होते ना पलके झपकने के पहले रथ को नीचे कर दिया, और अर्जुन का मुकुट उड़ा कर वो अस्त्र चला गया। तो अर्जुन को समझा भी नहीं ऐसे कैसे हो गया, बोले वो आपको छाती का वेध करके आने वाला था, मैंने रथ को 2 फुट नीचे किया तो आपका मुकुट उड़ा कर चला गया। वो ये भी कार्य भगवान ने किया, लात भी खा रहे हैं लेकिन पूरा निर्देशन भी कर रहे हैं क्या करना है, और जब समझ में नहीं आ रहा है सार रथी को तो वो भी कार्य कर रहे हैं वो। जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन तू पहले उतरना। बोले क्यों, आप उतरो ना? नहीं नहीं, आप उतरना पहले। वो उतर गए, अपने शस्त्र अस्त्र को लेकर बाहर चले गए, और जब भगवान उतरे तो रथ अग्नि में भस्म हो गया। बोला पहले मैं उतरता तो तुम अग्नि में युद्ध जीतने के बाद, विजय होने के बाद भी भस्म हो जाते। ये भी उनको ज्ञान था सब कुछ। तो केवल ड्राइवर नहीं बने वो। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो भगवान को जीत लेता है। रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताते हैं, उसमें 6वां लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी, क्लेशाग्नि शुभदा सांद्रादंद विशेषात्मा, ऐसे बहुत सारे गुण हैं उसके, बड़ा विषय, अलग विषय है वो चर्चा करने का। लेकिन अंतिम जो भक्ति का लक्षण है वो श्री कृष्ण आकर्षणी, और कोई वस्तु भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती है एक भक्ति के अलावा। क्यों नहीं आकर्षित कर सकती है? क्योंकि जो भी आप चीज़ दिखाकर भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करोगे वो सारी चीज़ भगवान ने दी होती है। धन दौलत है, शक्ति है, सिद्धि है, या कोई और चमत्कार है, वो तो हम उनसे ही सीखते हैं, उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्ति आपकी खुद की होती है, ओरिजिनल। तो मेरे दिए हुए वस्तु पर आप मुझे प्रभावित कैसे कर सकते हैं, उसी को दिखाकर मुझे इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपका भाव होगा खुद का, वो मेरे लिए आकर्षित करता है। तो शुद्ध भक्ति ये जीव की खुद की प्रॉपर्टी है, स्वेच्छा से किया हुआ काम है। तो राधा रानी उस शुद्ध भक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस का प्रतीक है। और आज हम जो समझते हैं ना, आप लोग समझते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं भक्ति करता हूँ, मुझमें इतनी भक्ति है, मुझमें इतनी भक्ति है, वो सारी भक्ति जो अणुमात्र हो या विभु मात्र हो, वो सारी भक्ति जो है उसका स्रोत राधा रानी है। क्योंकि भगवान ने अपने अंदर का जो भक्ति का अंग है उसको मूर्तिमान स्वरूप में राधा रानी के स्वरूप में प्रकट किया है, और वही सब जीवों को भक्ति प्रदान करती है, चाहे वो देवी देवताएं हो, उनकी खुद की शक्तियां हो, या उनकी गोपियां हो, या आम सब लोग हो, वो सब जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव सृष्टि भगवान ने की है, ब्रह्मा के द्वारा सब जीवों को निर्माण किया है भगवान के अंश के रूप में, हम सब उनके अंश हैं, वो सभी अंशों को भक्ति प्रदान राधा रानी करती है। और ये भक्ति जो मूर्तिमान भक्ति है राधा रानी, भक्ति देवी कहते हैं उनको, उनके चरणों का रज लेने के लिए वो बरसाना जाते हैं, वहाँ पर जाके रज में लोटपोट हो जाते हैं, उनके अधीन रहते हैं, उनके स्वामी होने पर भी उनके अधीन रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, स्वामी ही अपने सेवक का सेवक बन जाता है, ये दुनिया में नहीं होता है, केवल भक्तिमय जीवन में हो सकता है, वैकुंठ में हो सकता है, भगवान के धाम में हो सकता है। तो ये भाव जो है ना, ये भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए भगवान बरसाना चाहते हैं। जो भी भगवान के अंदर कृपा करने की शक्ति है वो भी वो राधा रानी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि राधा रानी कृपा देवी है, कृपामयी देवी है, वात्सल्यमयी देवी है, प्रेममयी देवी है, दयामयी करुणामयी है वो। भगवान एक तरह से सहजता से प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन राधा रानी ने सिफारिश किया तो तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान जीव, आप वृंदावन जाएंगे तो कोई कृष्ण कृष्ण नहीं पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, क्या बोला, हाँ, वृंदावन में सब लोग बड़े ही होशियारी से राधे राधे पुकारते हैं, क्योंकि राधे राधे पुकारने से तुरंत भगवान देखते हैं कि मेरे प्रियतमा को कौन पुकार रहे हैं। आपके बच्चे का नाम क्या है, हाँ, ब्रजेश, जो आप यहाँ पर बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, और कोई वहाँ पर ब्रजेश ब्रजेश पुकार रहा है, तो ब्रजेश के पहले आप देखेंगे उधर, इज इट नॉट ट्रू। यहाँ पर कोई आएगा बोलेगा अभिजीत अभिजीत, तो सबसे पहले कौन सुनेंगे, उसके माता पिता सुनेंगे कि मेरे बेटे को कौन पुकार रहा है, जो मुझे प्रिय है उसको कौन पुकार रहा है। और आपको पुकारेंगे शायद आप मग्न हैं कथा में, आपको सुना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके प्रिय व्यक्ति का नाम पुकारेंगे तुरंत सुनाई पड़ेगा आपको। यही फॉर्मूला है वो, राधा रानी भगवान को इतनी प्रिय है कि उनका नाम लेते ही भगवान का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है तुरंत। हरे कृष्ण बलदेव, वेलकम। तो यही प्रिंसिपल है। एक मोर था, मोर वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए नंदगांव चला गया, क्योंकि बरसाना राधा राधा का घर है और नंदगांव कृष्ण का घर है, तो वो कृष्ण को पुकारने गया, और गोविंद गोपाल कन्हैया कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर अनंत नामों से रो रो के पुकारता रहा, नो रिस्पॉन्स। बहुत देर तक कोशिश किया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो किसी ने कहा कि आप बरसाने चले जाओ और राधा रानी को मिलो, वो आपको कुछ बताएगी फॉर्मूला। तो वो बरसाने गए और राधा रानी को पुकारना, पूरा नाम पुकारने के पहले राधा रानी भाग के आ गई और उस मोर को गोद में लिया। मोर बहुत रो रहा था, बोला क्यों रो रहे हो, मैं नंदगांव जाके भगवान को इतना पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला, कुछ बताओ, ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे मैं उनको प्राप्त कर सकूं, वो मेरी आवाज़ सुन सके, मेरी पुकार सुन सके, मुझे अपना बना ले। तो उसका प्रामाणिक भाव देखकर राधा रानी व्याकुल हो गई, उसने कहा कोई चिंता मत करना, अपने गोद में लेकर बहुत दुलारा दुलारा प्रेम से दुलारा, और कहा कि अभी आप नंदगांव दोबारा जाओ और वहाँ जाकर गोपाल गोपाल मत पुकारो, वहाँ जाकर राधे राधे पुकारो। तो समझ में नहीं आया उसको कि ऐसा कैसे, बट राधा रानी बोल रही तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो उससे किया था उसमें वो हार चुका था, अभी नया नुस्खा अपनाना पड़ेगा। तो पूरी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ में चला गया। और कहते हैं कि नंदगांव जाकर रा और धे बोलने के पहले ही कृष्ण आ गए, पूरा ही नहीं हुआ अब तक नाम, ऐसी शक्ति है उसमें। भाग के आगे कृष्णा कि कौन मेरे प्रियतमा का नाम ले रहा है, वो क्या मोर पुकार रहा है, तो मोर को लेके गोद में लिया तो मोर इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना आनंद से विभोर हो गया कि उसके पंख झड़ने लगे भाव में। तो भगवान ने वो गिरे हुए पंख उठाया और सर पे धारण किया और आज तक धारण कर रहे हैं। ऐसे कई कहानियां हैं मोर पंख क्यों धारण करते हैं। तात्पर्य क्या है उसका कि भगवान उनको डायरेक्टली पुकारेंगे, शायद सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो बहुत वैसे ही है, वो क्या करें, समझ गया ना वैसे का मतलब क्या है। वो इंग्लिश में कहते हैं जो श्रूड लवर, उसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रूड लवर, बहुत कठोर है वो क्या है ना, वो अनन्य भक्ति चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते। बहुत क्या है ना, ऐसा 50-50 करेंगे तो वो नहीं आ सकते। आपका दिल इधर माया में भी 50% है, तो 50% आप हरी हरी भी कर रहे हो, फिर कभी 70% हो गया और 30% दिल माया के पास दिया हुआ है, 70% मुझे दिया हुआ है, 99.99% उनको दिया है और 0.001 माया को देख रखा है, फिर भी आंसर इज नो। जब 100% पूरा हो जाएगा ना तो फिर आपको शायद देख सकते हो, और तब तक आपका पेशेंस रहेगा क्या। ऐसे कृष्ण हैं, वो कह ही रहे हैं अर्जुन को, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरे साथ किसी और का चिंतन करोगे तो मैं प्राप्त होऊंगा गारंटी नहीं है। और ये भी कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जितना जितना मुझ पर ध्यान रखोगे उतना मैं आप पर ध्यान रखूंगा, जितना ध्यान कहीं और रखेंगे वो आप पर ध्यान रखेंगे। मैं पूरा प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, है ना, साफ साफ बता दिया है हिसाब किताब, जितना परसेंटेज आपका है उतना परसेंटेज मेरा, इक्वल शेयर रहेगा, जितना उनको दिया है वहां से आपको रिस्पांस मिलेगा, मेरा पूरा रिस्पांस चाहिए तो मेरा ही ध्यान करना पड़ेगा। अनन्य अनन्यस चिंतन तुम, लेकिन राधा रानी का ऐसा नहीं है, राधा रानी बहुत दयालु है, वो आप ऐसे 50-50 रहेंगे ना और उनको पुकारेंगे तो वो आपको गोद में लेगी और वो आपके अंदर जो कमियां हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब करेगी, आपको तैयार करेगी और रेडी करके फिर उनको अर्पण करेगी, लेकिन आपको धुतकारेगी नहीं, टाल नहीं देगी, आप त्याग नहीं करेगी आप, इसलिए उसको करुणामय कहा गया है। करुणा का मतलब क्या होता है, आप दंड के पात्र हैं फिर भी आपको दंड नहीं दिया जा रहा है, उसको करुणा कहते हैं। जो फांसी शिक्षा मिलती है ना किसी को, सजा मिलती है, तो वो क्या है, फांसी सजा का योग्य पात्र है, वो उसको देना चाहिए फांसी, सब कोर्ट ने बोल दिया फांसी देना जरूरी है, फिर भी जाता है राष्ट्रपति के पास, दया का क्या कहते हैं, दया का अर्ज करता है, करुणा का अर्ज, प्लीज अगर आपके बस में हो तो हमको डिस्काउंट दे देना आप। और राष्ट्रपति सब तरफ से भी फांसी की सजा लगी है फिर भी वो माफ कर सकने का अधिकार उस जगह पर है, तो वैसे राधा रानी का पोजीशन है, बहुत यूनिक पोजीशन है। उसकी एक सुंदर कथा आती है, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राधा रानी की दया जो है ना कितनी अगाध है, कैसे पापियों से पापियों को भी वो तार सकती है, अगर वो सही भावना में आएगा तो वो पाप से पाप करने वाला व्यक्ति भी जो है वो सारे पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। आपने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा ना, अश्वत्थामा, आप सबको वो कथा पता है, अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र था, ब्राह्मण का पुत्र था, बचपन में इतना गरीब पिताजी थे उसके कि दूध, गाय नहीं थी दूध भी नहीं था, तो उसको ना आटा को पानी मिलाकर उसको दूध जैसा देकर उसको मतलब दूध के समझ के पिलाते थे, इतनी गरीबी थी। फिर वो उस गरीब अवस्था में द्रुपद के पास गए गाय मांगने के लिए, तो उसने धुतकार दिया, अपमान कर दिया, फिर अपमान से प्रेरित होकर वो कौरवों के पास में आए तो भीष्मदेव ने उनको गुरु का पद दे दिया, फिर पांडवों के कौरवों के गुरु बने वो। उसमें द्रोण के फिर पुत्र को दूध मिला, गाय मिली, सब कुछ ठीक से हो गया काम। तो दुर्योधन के राज्य में था ना वो, धृतराष्ट्र के राज्य में दुर्योधन युवराज था, तो अश्वत्थामा की दोस्ती आप कहिए दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश दुर्योधन से हुई, और वो दुर्योधन का एकदम खास मित्र बना, क्योंकि नमक वहाँ से प्राप्त हुआ ना भोजन, तो स्वतः नेचुरली उनसे मैत्री हो गई उनकी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भी वो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया उसने, ब्राह्मण पुत्र होने पर भी। सब जानते हुए कि सत्य का पक्ष किसका है, असत्य का पक्ष किसका है। और फिर युद्ध समाप्त होने आया तो सब लोग मर गए लाइन से, भीष्मदेव धारातीर्थी हो गए, सरपंजर में गिर गए, द्रोण जी का मृत्यु हो गई, कर्ण की मृत्यु हो गई, और आखिर में दुर्योधन की मृत्यु होने लगी, है ना। दुर्योधन का इस तरह से वध हुआ, अभी तो मरे नहीं थे वो, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े थे। जब पिताजी का देहांत हो गया तभी वो बहुत क्रोध से व्याकुल हो गया था, लेकिन किसी और नेतृत्व में युद्ध करता रहा वो, कर्ण सेनापति बना, उसके में चलता रहा उसका। लेकिन जब दोस्त की मृत्यु होने का समय आया और उसको उस जंगा के इस जगह पर छिन्न विच्छिन्न अवस्था में अति तीव्र वेदना में पड़ा हुआ जब दर्शन हुआ उसको, तो उसको बिल्कुल रहा नहीं गया, उसके प्रेम की वजह से, कुछ भी बोलो, दोस्ती की वजह से। तो वहीं उसने प्रण ले लिया अपने आप ही कि मैं इसका बदला लूंगा और जिन्होंने ये किया है उसका वंश नाश कर दूंगा मैं। दुर्योधन वीर था, वो ऐसा कायर का काम करने वाला आदमी नहीं था, दुष्ट था लेकिन वो कायर काम करने वाला आदमी नहीं था। तो ये दुर्योधन की इच्छा नहीं थी, ये सोचता तुम जाओ वो सबको, बच्चों को मार दो सोते समय, ऐसा बोला नहीं था। ये खुद गया अपनी इच्छा से, द्वेष और क्रोध से पीड़ित होकर, और एक जगह आग लगाई और जिस कुंड में, जिस तंबू में पांडव सो रहे थे निश्चिंत होकर, अब युद्ध हो गया है, जीत गए, चैन की नींद सो रहे थे पांडव, सो रहे हैं समझकर वो तंबू को एक जगह से आग लगाई एक तरफ से, और दूसरी तरफ से तलवार लेके खड़ा हो गया, कुछ लोग कहते हैं धनुष बाण लेके खड़ा हो गया, कोई बात नहीं। वो सब लोग भाग रहे आग की वजह से, रात को अंधेरे में समझ में ना क्या हो गया, एकदम भ्रमित होकर भाग रहे यहां वहां, जो आ रहे सबका सर काट रहे हैं। तो उस कार्य में, वो दुष्ट कार्य में पांडवों के बच्चों का वध हो गया। पांच पांडवों के पांच वीर पुत्र थे जो उस तंबू में थे, उसमें पांडव नहीं थे, तो गलती से वो दूसरे तंबू में आग लगाया, तो सारे पांच बालकों का वध कर दिया गया। जब सुबह होगी तो पता चला कि पांच पुत्रों का वध कर दिया है, सर काट दिए गए हैं, सर कलम कर दिए गए सबके। तो भीम और अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए, तो सबको पता चला कि अश्वत्थामा ने कार्य किया है। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि उसका पकड़ के लेके आएंगे, दंड देंगे उसको। तो वो रथ लेकर भागने लगे, कृष्ण रथी सारथी और अर्जुन और भीम उसके पीछे भागने लगे। वो भी रथ लेकर भागने लगा, उसको पता चला अभी तो क्या है, बचना तो नामुमकिन है, जब अर्जुन मेरे पीछे लगे हुए हैं तो अभी कौन बचा सकता है। तो भाग रहे भाग रहे भाग रहे, तो उसमें और एक काम किया कि चलो अभी और एक काम कर देते, इनका जो वंशज है ना वो उत्तरा के गर्भ में है, अभी उसको एक बाण भी मारना काफी था, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे कि बोलते ना कभी कभी हम लोग बात बात में बोलते हैं कि चूहा मारने के लिए बम गोले की जरूरत क्या है, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक गर्भ को हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकते हैं, इतना क्रोध। क्रोध में आदमी ना क्या करता है वो समझ में नहीं आता उसको, अतर्क संबंध बातें करता है वो, और कार्य भी ऐसे करता है अतर्क, यानी कि कोई उसका बेसिस नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है वो, लेकिन क्रोध ऐसा चीज है वो महाविध्वंसक बन जाता है। तो अश्वत्थामा ने और उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस समय भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर वो ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया अपनी गदा के प्रभाव से, अंगुली मात्र आकार का दिव्य स्वरूप धारण करके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। ऐसा कोई अवतार ने कार्य नहीं किया आज तक, किसी माता के गर्भ के अंदर जाकर अपने भक्त को बचाया उसने, और अंदर गर्भ के रूप में परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन किया। इतना अंधकार में जगह पर इतना तेज पैदा हो गया भगवान के आने से, चतुर्भुज भगवान ने दर्शन दिया और अपनी गदा से पूरा ब्रह्मास्त्र नष्ट करके उस बालक को ब्रह्मास्त्र से मरने से बचाया। बाहर भी थे वो, बाहर भी अपना कार्य कर रहे थे, किसी को पता नहीं था, अंदर जाकर नष्ट करके बाहर आ गए। इज दैट राइट प्रभु जी? और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा सब सबको नष्ट करने के लिए। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला इसको तार काटो, तो दो ब्रह्मास्त्र आकाश में गए और व्यासदेव ने उनको निष्प्रभाव कर दिया, और फिर अश्वत्थामा भागने लगा, रथ छोड़कर, रथ भी उसके घोड़े भी हार गए, तो रथ से कूदकर भागने लगा, तो ये भी रथ से उतर गए और पैदल भागने लगे, और कुछ देर जाकर उसको पकड़ा। उसको पता था अभी मृत्यु निश्चित है मेरी। उसको पकड़कर बंदी बनाकर घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेके आए, जहां पर 5 शव रखे थे। द्रौपदी विलाप कर रही थी अपने पुत्रों पर। तो पकड़ के डाल दिया उसके सामने, बोलो इसका क्या दंड देना है, अभी के अभी मार सकते हैं उसको, बताओ क्या करना है, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं। द्रौपदी तुरंत बोला, अभी उसका वध कर दो, उसने मेरे 5 बच्चों का वध कर दिया है। ऐसे तो नेचुरल आंसर मन में आता ना, तो जिस माता के 5 बालकों का ऐसे निर्घृण हत्या की गई है नींद के समय, युद्ध में होती तो कोई बात नहीं, वो तो गर्व करते अपने पुत्र पर, लेकिन नींद में हत्या की गई इतने वीर पुत्रों की, कितना दुख हो गया उसको, अन्याय के कारण, अन्याय की तरह हो गया ना वो, सामने चैलेंज करते, सावधान करके तो युद्ध करते वो। तो कोई भी माँ कहती कि मार दो इसको तुरंत, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा उत्तर दिया जो एकदम चमत्कारिक उत्तर दिया। वह कहते हैं, इन 5 पुत्रों का मृत्यु होने के पश्चात जो मुझे दुख हो रहा है वो मैं मेरी गुरु माता को नहीं देना चाहती। गुरु माता कौन है? द्रोणाचार्य की पत्नी, क्या नाम था उनका? कृपी, कृपी कृपाचार्य की लड़की थी ना वो, नहीं बहन, बहन थी द्रोण की पत्नी। तो कृपी माता को वो दुख नहीं होना चाहिए जो मुझे अभी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो गुरु माता है, हम सब लोगों ने उनसे विद्या प्राप्त की है, पूरा ऐश्वर्य शस्त्र कौशल्य सब उनसे प्राप्त किया है, आज युद्ध का विजय भी हुआ है तो उनकी कृपा से हुआ है, क्योंकि आपने उनसे सीखा था, तो हम ऋणी है उस गुरु माता के। गुरु माता भी एक साथ माता के बीच पर एक माता मानी जाती है, तो हम हमारी माता को पुत्र वियोग का दुख नहीं देना चाहते, छोड़ दो उसको आप। लेकिन भगवान जो है ना वो बड़े क्रोधित हो गए थे अश्वत्थामा के। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, वध करो इसका। द्रौपदी ने कहा, मत वध करो इसका। भगवान ने कहा कि इसका वध होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, ऐसा कार्य करो तो कैसे कर सकते ये, उसका वध भी करो और वध भी नहीं करो, दोनों कार्य होना चाहिए, ऐसा कार्य करो। तो जो जानकार व्यक्ति है वो सब जानता है कि कैसे करना है। एक क्षत्रिय को, या तो क्षत्रिय समझकर कार्य करने वाले को, युद्ध में कार्य करने वाले को, अपमान जो है ना वो मृत्यु से बड़ा होता है। जैसे वो रुक्मिणी का भाई था, उसका भी, रुक्मिणी का भाई है तो भगवान मारने वाले थे, तो बलराम जी ने कहा, अरे वो भाभी का भाई है, वो कैसे उसको मारोगे तुम, भाभी को कितना दुख होगा, नहीं नहीं भाई भाभी है और तुम उसको भाई को मारकर शादी करते समय दुख दोगे, अभी क्या करेंगे, अभी वो फिर नहीं मार सके उसको, लेकिन मारना भी था और नहीं मारना भी था, तो क्या किया, सब उसके आधे बाल यहाँ से काट दिया, आधी मूछ काट दिया, आधी दाढ़ी काट दिया, उसको कुरूप बना दिया पूरा, वो बंदी बनाकर छोड़ दिया उसको, जाओ यहाँ से। तो मृत्यु से भी अधिक वेदना हुई उसको, रुक्मी को, और प्रण भी लिया था उसने कि मैं अगर कृष्ण को मारूंगा नहीं तो विदर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा। तो फिर वो विदर्भ में गया नहीं और कहीं बस गया बीच में, क्या नाम था देश का वो, बीच में कहीं बस गया वो, यहाँ पर बाद में बलराम ने उसका वध कर दिया। खैर कोई बात नहीं, तो उसी तरह से उन्होंने सोचा कि इसका अपमान करेंगे तो मृत्यु से भी अधिक दंड मिलेगा उसको। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं, इतना अपमान मत करो, वध कर दो मेरा, आप युद्ध में अगर मैं हार रहा हूं तो मुझे ऐसा बिना मारे छोड़ मत दो, ऐसे दया करके, वो मेरे लिए मृत्यु से बढ़कर होगा, आप सर काट दो मेरा, वो मेरे लिए गौरव की बात होगी और मैं स्वर्ग में आरोहण करूंगा। तो अश्वत्थामा का भगवान ने ना वो मणि था उसके सर पे वो निकाल दिया, वो अश्वत्थामा के बल का, शौर्य का, शक्तियों का उगम था, निकाल दिया उसको। और क्या किया भगवान ने, शाप दिया उसको कि तुम्हारा ये जख्म है ना तो किसी भी दवा से सूखेगा नहीं, इसमें से खून बहता ही रहेगा, इसमें इतनी वेदना होगी कि आपको लगेगा मृत्यु हो तो अच्छे है, इतना बड़े वेदना सहने के बदले मृत्यु ही ठीक है, मृत्यु का दर्द में चलेगा मुझे लेकिन ये वेदना मैं सहन नहीं कर सकता, ऐसा आपको लगेगा फिर भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। विश्व में कहीं भी जाओगे आप तो आपको मृत्यु नहीं होगी, आप अजरामर रहोगे, ये दर्द होता रहेगा, जख्म पिघलती रहेगी, खून बहता रहेगा। तो अर्जुन ने क्या किया, एनीथिंग अर्जुन डिड, नो कृष्णा ओनली डिड। तो अर्जुन ने मारा नहीं, भगवान ने ऐसा साफ दिया। अब देखिए आप, जो सुप्रीम हाईकोर्ट है वहां से आपको दंड मिला है तो अभी क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान जो सृष्टि के रचयिता है, जो दया के सागर है, करुणा के सागर है, वो क्रोधित होकर आपको शाप दे रहे, तो आपको भी कौन बचा सकता है, जाओ चले जाओ यहां से, ऐसा उसको भयंकर अवस्था में निष्कासित कर दिया। अश्वत्थामा उसी समय दर्द के मारे इतना परेशान हो गया, इतना पीड़ित हो गया, जगह जगह जाकर भीख मांगने लगा, दर्द से निवारण करो, दर्द से निवारण करो। कोई दवा नहीं चल रही है उसके ऊपर, कोई वैद्य नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई व्रत नहीं है, क्योंकि ऐसा शाप दे के रखा है कि आप कुछ भी करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, तो भी आपको इस दर्द से निवारण नहीं होगा। ऐसे पहले ही ऐलान कर दिया तो क्या कर सकता है वो। तो वो शिव जी के पास गया, बोलो महाराज कृपा करो। तो शिव जी महाराज कहते हैं, हमारे आराध्य भगवान ब्रजेश तनया श्री कृष्ण भगवान, हमें उन्होंने आपकी ऐसी अवस्था करके रखी, हम कौन होते हैं उनको उसको तोड़ने वाले, हमारे अंदर क्या अधिकार है, जो हमारी हरी इच्छा जो है वही सब कुछ है, माफ करना, हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी सर। निराश होकर चले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने वही बताया उनको, वो तो हमारे पिताजी हैं, जगत गुरु है श्री कृष्ण भगवान, सर्वनियंता है, गौलोकेश्वर, सर्व सिद्धेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो, उनके द्वारा वो मुख वाक से वाक्य निकला है, उसको कौन तोड़ सकता है, उसका परिणाम कौन नष्ट कर सकता है, किसकी हिम्मत है ऐसे करने की। तो फिर भी बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत रोए, इस दर्द के वजह से सारा अहंकार, सारा क्रोध, सारा द्वेष सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इतना दर्द दिया भगवान ने उनको। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक मेरे मन में एक विचार आ रहा है, पता नहीं है कैसा चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास कुछ उपाय तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है उपाय, तो ये उपाय करने में कोई नुकसान नहीं है, आप बरसाने जाओ और वहां पर राधा रानी का निवास है, वहां पर आप जाकर राधा रानी को पुकारो। तो इस बीच में जब तक जब कृष्ण ने उनको निकाल दिया था, बहुत सारा विश्व भ्रमण किया था, यहाँ वहाँ जाके मत्था टेक के आए थे, सब जगह मत्था टेक के आए, कहीं उपाय नहीं हुआ, तो बीच में इस सारे कालावधि में हृदय जो है ना वो कोमल 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 हो गया था, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो गया था, लेकिन दर्द अभी भी था, रोह भी रहा था। तो बरसाने के पास जगह है, इसको आज के तारीख में पिसाया कहते हैं, संस्कृत का नाम क्या है, पिपासा वन, बहुत सुंदर वन है, बहुत ही सुंदर वन। वहां पर जाकर रो रो के पुकारने लगे राधा रानी को, और कुछ ही समय में राधा रानी प्रकट हो गए उसके सामने, और राधा रानी ने स्पर्श करते ही उसकी जख्म पूरी तरह सूख गई, सारा दर्द नष्ट हो गया और दुख नष्ट हो गया, और परमानंद का अनुभव तुरंत तत्क्षण होने लगा, उनको आंखों से प्रेम से अश्रु बहने लगे। राधा रानी ने प्रामाणिक भाव से जब उनको पुकारा राधा रानी को, तो तत्क्षण दर्शन देकर राधा रानी ने सब गुने माफ कर दिए उसके। लेकिन भगवान ने तो अमर रहने का वरदान दिया था उसको कि तुम मरोगे नहीं, उन्होंने कहा अभी मेरे लिए क्या आदेश है, उन्होंने कहा ये मेरा प्रिय वन है, बहुत प्रिय वन है, नाम इसका है पिपासा वन। पिपासा का अर्थ क्या होता है, एक होती है प्यास जो लगती है, हम पीते हैं पानी, लेकिन कभी कभी प्यास लगने पर कई दिन तक पानी नहीं मिलता है, तो उस प्यास का रूपांतर पिपासा में हो जाता है, तीव्र प्यास, जानलेवा प्यास। हाँ, तो जब हमें ऐसी प्यास लगती है मिलन की भगवान की, तो जब पिपासा उत्पन्न होती है भगवान से मिलने की, तो हम दोनों यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लीला करते हैं, रास रचाते हैं, ये हमारा रास मंडल है। यहाँ पर जब हम रास किया था एक बार, तो हमें प्यास लगी थी रास करने के बाद, तो कृष्ण भगवान ने कुंड खोदकर, उसका नाम श्याम कुंड है, उसका कुंड से पानी हमको पिलाया था, हमने अपनी प्यास बुझाई थी। और जब कृष्ण को प्यास लगी थी तो मैंने कुंड खोदा था जिसका नाम राधा कुंड है, उसकी प्यास पानी पीकर कृष्ण भगवान ने अपनी प्यास बुझाई थी। ऐसा हमारा ये दिव्य वन है पिपासा वन, इसकी आप रक्षा करना और यहीं बैठकर भजन करना, और जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं उनकी सेवा करना, इस पूरे वन की सुरक्षा और देखभाल करना। तब से अश्वत्थामा जी वहाँ रहते हैं। जो दुनिया में स्वयं भगवान के द्वारा शापित है, ब्रह्मा शिवजी द्वारा भी उनका उपाय नहीं हो सकता है, वो राधा रानी के चरणों में आकर माफी को प्राप्त किया, क्षमा प्राप्त किया उसने, क्षमा ही नहीं प्राप्त किया, राधा रानी केवल क्षमा करती नहीं है, साथ में प्रेम भी देती है, भक्ति भी देती है। आज अश्वत्थामा शुद्ध भक्त बनकर पिपासा वन में निरंतर निवास कर रहे हैं केवल राधा रानी की कृपा से। ऐसे बहुत चिरंजीवी जीव हैं, आप जानते हैं ना, जाम्बुवंत है, हनुमान जी है, काकभुशुंडी है, ऐसे चिरंजीवी जीव बहुत सारे हैं, उसमें एक अश्वत्थामा है। और वो निकले थे भगवान के सामने से दर्द में, पीड़ा में, शापित होकर, लेकिन राधा रानी के धाम में आकर उनकी कृपा प्राप्त करके आज आनंदी होकर, शुद्ध भक्त होकर, संत होकर वहां पर जी रहे हैं। और पिपासा वन में जो भजन करते हैं संत लोग, जो सिद्ध महात्मा हैं, जो काम रहित हो गए हैं और परम भक्ति की स्थिति में रहे, संत स्थिति में प्राप्त कर चुके हैं, वो सब लोग अश्वत्थामा का दर्शन करते हैं आज भी। और उस वन की एक महिमा है, उस वन में अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ कार्य के लिए पेड़ तोड़कर लकड़ी लेके जाता है तो वो या तो अंधा हो जाता है, या तो उसको लकवा मार जाता है, या तो मर जाता है। अभी अभी ना हमारे कैंप के समय, 2-3 कैंप के पहले, एक जवान लड़का ऐसे मस्ती में जाकर लकड़ी तोड़ कर लेके आया। वो पिपासा वन के पास में खायरा है, कुछ 2-3 किलोमीटर ही है वहां से। तो वो पिपासा वन से लकड़ी तोड़कर अपने गांव में पहुंचा, तक तो अंधा हो गया वो। उसको समझ में नहीं आया अंधा कैसे हो गया। तो बुजुर्गों ने बताया, मूर्ख व्यक्ति तुम पिपासा वन से लकड़ी लेके आते हो, मूर्ख व्यक्ति हो, तुरंत जाकर लकड़ी तोड़ के आओ तो परमानेंट अभी अंधे हो गए हो, लकवा भी मार जाएगा आपको, मर भी सकते हो आप। तो डर गया बेचारा, वो भाग भाग के वापस लकड़ी छोड़ा, वापस दृष्टि आ गई उसकी, उसको हमारे कैंप में नहीं आना पड़ा। ये आपको लगता है कि हम प्रे क्या प्रभु जी कहानी बताते हैं, डॉक्टर होकर ऐसी बातें बताते हैं, जाकर लकड़ी जाके तोड़ के देखो है ना। अब एक 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 नॉलेज कैसा होता है, हम बता रहे हैं आप सुन रहे हैं शब्द प्रमाण। हाँ, आप शब्द सुन रहे हैं और यकीन हो रहे हैं आपको, मान रहे हैं आप। शब्द नहीं मानेंगे तो क्या करते हैं, अनुमान। आप खुद जाकर करके देखो, माँ बता रही है आग को हाथ मत लगाओ जलेगा हाथ, तो माँ की बात सुनकर आपको हाथ नहीं लगेगा, नहीं, मुझे माँ पर बात पर विश्वास नहीं, मैं खुद लगा के देखूंगा। खुद लगाएगा तो जलेगा ना, तो फिर समझेगा हाँ, जो माँ ने कहा था वो सही था। लेकिन वो सेकेंड ग्रेड का अंडरस्टैंडिंग है, दुय्यम दर्जा है वो ज्ञान प्राप्त करने का। शब्द प्रमाण प्रथम दर्जे का ज्ञान है, सुनना और समझना। दूसरा, समझ में अगर नहीं आया सुनकर तो फिर शब्द अनुमान प्रमाण है। अनुमान का मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, सॉरी, अनुमान का मतलब है कि किसी का हाथ जलते हुए आप देख रहे हो तो आप समझते हो कि हाँ मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन सुना है आपने फिर भी नहीं माना, किसी का हाथ जलते हुए देखा फिर भी नहीं माना, खुद लगाकर देखा तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, खुद का हाथ जल गया तो सब लाइन में तीनों बातें समझ में आ गई। तो अगर मेरी बात को विश्वास नहीं हो रहा है, पिपासा बन जाइए और लकड़ी लेकर आइए, फिर आपको मालूम पड़ेगा क्या होता है। जैसे वो लड़के को मालूम पड़ा, तुरंत लौट के गया तो दृष्टि वापस आ गई उसकी। अब ये हमारे सामने हो गया है तो हम कैसे उसको नहीं मान सकते हैं, हाउ वी कैन नॉट बिलीव। और इसलिए आप उस वन से लकड़ियां ले सकते हैं, अगर आपके घर में पवित्र कार्य है, भगवान का अनुष्ठान है, भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं लकड़ी वहां से। उसका नियम है कि आप जितनी लकड़ी लेके जाएंगे, जितना उपयोग होगा उतना उपयोग कर लीजिए, बचेगा तो वो लकड़ी जाकर वापस छोड़ के आना है आपको। इसलिए उस वन में आप जाएंगे ना दर्शन करने के लिए, बहुत सुंदर वन है, बहुत विशाल वन है, उसके अंदर राधा कुंड है, श्याम कुंड है, भगवान का विग्रह है कोने में, और लेकिन जगह जगह लकड़ी ऐसी रच के रखी हुई है, स्टॉक में ऐसा स्टैक बना के रखी हुई है, क्योंकि तो आपने लिया आपका काम हो गया, बचा हुआ लकड़ी आपने जाकर जमा करके रख दिया। आप गए तो जितने लोगों ने लिया है सब लोगों की बची लकड़ी जो है वो सब जगह ऐसे फैला के रखी हुई है जगह जगह, वो उसका प्रमाण है। तो आदर पूर्वक आपको वहां का सामान जो है वो भगवान की सेवा में ही लगाना है। और बाय द वे, केवल पिपासा वन में ये नहीं करना है, जीवन भर में करना है, जहां पे आप रहो वहीं यही करना है। आप सृष्टि से जितना चाहिए उतना ले लो, अपने लिए जो उपयोग है वो ले लो, भगवान की सेवा में उतना चाहिए उतना भी ले लो, लेकिन संचय करने के लिए मत लो, स्वार्थ के लिए जमा मत करो। पंचे कैसे करते हैं, और 100 किलो आप उधर डाल दो गेहूँ जमीन पर, सब पंचे आते हैं अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, लंच तक वहाँ रह गया तो लंच में आते लंच में भी खा के जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी बैग लेकर आता है क्या उधर, बैग लेके पूरा 4 दिन का सामान भर के, अभी 4 दिन वही आराम से पेड़ पर रहेंगे, उड़ेंगे नहीं किधर, आराम से खाएंगे, सब समाप्त होगा तो वापस जाएंगे ढूंढने के लिए। लेकिन मनुष्य वहां पर आएगा तो क्या करेगा, एक नहीं 2 थैली लेकर आएगा, और जितना हो सके उतना भर के लेके जाएगा, और वो 2 थैली में नहीं आया और है तो घर जाएगा, 2 थैली रखेगा, 3री थैली लेके आएगा, उसको लेके जाएगा, उधर पाप लगता है। जरूरत से अधिक हम जब ग्रहण करते हैं, संचय करते हैं, तो वो संचयित जो वस्तु है, संचय की गई है, वही आप पर मति पर बुरा असर करती है और पाप करने पर मजबूर कर देती है, पाप के फलों में आपको लिप्त कर देती है, बद्ध कर देती है। तात्पर्य यह है इस कथा का कि सबसे पापी से पापी जीव जब राधा जी के शरण में आता है तो पाप से मुक्त होता ही है और प्रेम और भक्ति को प्राप्त करता है। और जब राधा रानी किसी को माफ करती है तो उस ऑर्डर को भगवान रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो फाइनल ऑर्डर है, उस ऑर्डर के वो भी क्या कहते हैं उसको, रिसिपियंट है, उनसे भी लेने वाले है वो, ऐसा राधा रानी का धाम है। और बरसाने में पूरे वृंदावन में भगवान ने बहुत लीला किया है, कहीं रास रचाया है, गौचारण किया है, राक्षसों को मारा है, लेकिन आपको कभी भी आपके पढ़ाई में बरसाना नंदगांव में राक्षस आया ऐसे आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि वहां पर भगवान और राधा रानी और भक्त लोग जो है वो बहुत ही उत्कट, बहुत अंतरंग लीला करते हैं, मोस्ट प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स, बहुत ही उत्कट और बहुत ही अंतरंग लीला वहां पर संपन्न होती है। तो इतनी उत्कट होती है वो कि उसमें राक्षस आकर बाधा डालना मुमकिन नहीं है, वो लीलाएं ऐसी होती है वो बाधा डालने जैसे लीला नहीं है। जैसे आप गौचारण कर रहे हो तो राक्षस आकर बाधा डालता है उसमें, गौचारण छोड़ के भगवान उसको मारते हैं, गौचारण में बाधा आती है, व्यवधान होता है उसके अंदर, फिर भगवान मारते हैं, कुछ समय बीतता है उसके अंदर, फिर वो हाथ पांव धोते हैं गंगा जमुना किनारे में, फिर बैठते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर और कोई राक्षस आता है, फिर उसका फिर वापस व्यवधान, फिर इंटरप्शन, फिर वध, फिर वापस लेना चालू, ऐसे बाकी वनों में होता है। हाँ, भगवान ने यहाँ पर वध किया, सो गए तो आग ने व्याप्त कर लिया, फिर आग को नष्ट कर दिया, फिर आगे जाएंगे तो उधर वरुण देव ने छीन लिया पिताजी को एकादशी के दिन, ऐसे चलते रहता है। लेकिन बरसाना में कोई राक्षस नहीं आया। इसका कारण यह है कि भगवान वहां पर राधा रानी अपनी अंतरंग लीलाओं को संपन्न करने के लिए कोई राक्षसों का व्यवधान आना नहीं चाहते उधर, दे डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड। तो उसको करने के लिए उन्होंने एक लीला किया। जब भगवान उधर गोकुल में थे ना, तो गोकुल में रोज एक एक राक्षस आता था, एवरीडे वन राक्षस, और बालक थे भगवान बहुत छोटे से, अभी जन्म ही नहीं हुआ था, कभी जन्म हो ही गया था तो तुरंत पुतना आ गई दूध पिलाकर मारने के लिए, फिर बैलगाड़ी बनकर एक शकट बनकर राक्षस आया, फिर चुनावर्ता आया, फिर क्या क्या नहीं हुआ, इतने से बालक को मारने के लिए इतने बड़े बड़े राक्षस आ रहे। तो एक दिन मीटिंग किया उन्होंने, अब बोले अब परेशान हो गए यहाँ पर हम, कि यमुना किनारा जो तुरंत क्रॉस करेंगे तो मथुरा आता है, तो वहाँ पर राक्षसों को आने में कोई तकलीफ नहीं है, तुरंत यमुना पार करके तो तुरंत गोकुल। अभी हम लोग आए यहाँ पर क्यों थे, क्योंकि हम दोनों को संतान नहीं थी, वृषभानु महाराज को और नंद महाराज को, बालक नहीं हुए थे, तो उन्होंने तय किया था कि नंदगांव से बरसाने से हम गोकुल और रावल जाएंगे, यमुना किनारा बहुत पवित्र है, यमुना किनारे रहने से हमको संतान प्राप्त होगी। तो अभी पूर्ण हो गया ना, यमुना किनारे आ गए, वृषभानु महाराज को राधा रानी प्राप्त हो गई, हमें कृष्ण बलराम प्राप्त हो गए, अभी उद्देश्य सफल हो गया है, और आतंक यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, दोबारा अपने घर जाना चाहिए जो यमुना से बहुत दूर है। तो फिर वो निर्णय लिया उन्होंने और धीरे धीरे यात्रा करते हुए वापस पहुंच गए। तो अगले दिन जब राक्षस आया तो गोकुल खाली, रावल भी खाली, सब खाली, थोड़ा आश्चर्य हो गया, लौट के गया, बोला कंस महाराज वहां तो कोई है ही नहीं, लोग कहाँ गए सब लोग। तो उन्होंने ना अपने सेनापति को भेजा, दो सेनापति और उनके दो पुत्र, और शांडिल्य मुनि ने एक बार नंदगांव में तपस्या करते समय राक्षस ने उनको थोड़ा कष्ट दिया था, तभी उन्होंने शाप देकर रखा था कि यहाँ पर कोई राक्षस आएगा ना तो पत्थर बन जाएगा, कृष्ण के आने के बहुत पहले की बात है। तो वो दो सेनापति दो पुत्र जो है वो ढूंढते 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 आए नंदगांव पहुंच गए, और नंदगांव में उन्होंने कृष्ण बलराम को खेलते हुए देखा, जैसे उनको पकड़ने गए वो पत्थर हो गए सब चारों, बड़े ऐसे विशाल पत्थर, अकराल विकराल भयंकर आकार के। मतलब क्या हुआ, जो चार जन स्पेशल मिशन पे गए थे वो भी लौट के नहीं आए, तो कंस बहुत परेशान हो गया, और कंस जो है वो खुद आया, कभी मैं ही जाके देखता हूँ क्या चल रहा है, ये रहस्य क्या है, जो जाता है उसको मैं दोनों टिकट निकाल के देता हूँ, जाने का और आने का, लेकिन कोई लौट के नहीं आता है, ऑल रिटर्न टिकट वेस्ट, ओनली वन वे टिकट टू हेल, यमराज के राज्य में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर लौट के कोई आता नहीं, खुशखबरी लेकर के आप कंस महाराज आपने जिस मिशन पे भेजा था वो सफल करके हम आ गए हैं, तो उसने बलराम का वध कर दिया। ये सुनने के लिए आतुर है वो तो, लेकिन कोई लौट के नहीं गया बताने के लिए। सब हम लोग सिधार गए, ये भी लौट के नहीं आए, तो खुद गया वो। लेकिन क्या कहें आपको, जैसे ही बरसाने में प्रवेश किया वो स्त्री बन गया, उसका शरीर का रूपांतर स्त्री में हो गया। आप सोच सकते हैं कि कंस जैसा व्यक्ति अगर स्त्री बने तो क्या उसकी अवस्था होगी। वो दिग्विजय सम्राट था, उसने चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में जा जाकर सबको परास्त किया था। जितने भी राक्षस कृष्ण ने मारे हैं ना, वो सबको जा जाकर उसने परास्त करके अपना नौकर बना दिया था। कोई मित्र बना, कोई नौकर बना, लेकिन बना उसका सबॉर्डिनेट। ऐसा गर्ग संहिता में कई अध्याय है उसके, कैसे पराक्रम किया कंस ने और जाकर ये सब राक्षसों को अपने वश में कर अपने नौकर बना के रखा था। सब मथुरा में डेरा जमा कर रखे थे आदेश का पालन करने के लिए। और वो चक्रवर्ती सम्राट जिसकी खड़ग के चमक से देवता भी कांपते थे, वो जब बरसाने में आए तो कन्या बन गया, गोपी बन गया वो। ऊपर वस्त्र पहने हुए थे, अंदर सब चेंज हो गया था। तो अभी कितनी संकोच की अवस्था देखो आप, वापस डर के भाग के जाना भी मुमकिन नहीं है। वहां के लोग क्या बोलेंगे, अरे हमारे महाराज को क्या हो गया, अभी तो अच्छे थे जब गए थे, अभी तो कुछ अलग ही होकर आए, कुछ सहमे सहमे से लग रहे हैं, कुछ कमजोर से लग रहे हैं, कुछ शरीर का आकार बदली हो गया उनका, कैसे मुंह दिखाएंगे अस्थि और प्राप्ति को। जरासंध की पत्नियां थी वो। एक बात बता दें आपको, हाँ, कितने बलशाली थे कंस। जब दिग्विजय में गए थे ना एक बार, तो ऐसे परास्त करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो जरासंध के देश के पास पहुंचे, मगध देश, आज का कौन सा देश, हाँ बिहार, वो मगध जरासंध का राज्य था। उसके पास पहुंचे और अपने तंबू लगाया और आराम करने लगे। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करने लगे, अपने योद्धाओं को लेकर, मल्लों को लेकर मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस करने लगे। और 5-5 मल्ल जो है ना, वो क्या नाम, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोमर, ऐसे 5 पहाड़ जैसे जो योद्धा थे, वो एक अकेले लड़ रहा है उसके साथ में, और सब अपने पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, उनको वो अकेला संभाल रहे हैं। उतने में ना जरासंध के पास वो हाथी था कुलयपीड, कितने हाथी का बल था उसके अंदर, 2000 हाथी का शायद बल था। बड़ा सिद्ध था वो, हाथी के रूप में था लेकिन बड़ा महात्मा था वो, मतलब बलवान, सिद्धि प्राप्त किया हुआ, इतना बल था उसके अंदर। वो पशुशाला में जरासंध के बंधा हुआ था, अचानक उसका क्या होता है समझ में नहीं आता है, उसका मति भ्रष्ट हो जाती है पूरा, वो बेकाबू होकर साखल तोड़कर भागता है सीधा। इतना विशाल हाथी, इतना शक्तिशाली, मद मत होकर भागता है और उसी तंबू में प्रवेश करता है जहां पर कंस अपना प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी ख्याति हाथी की सब जगह फैली हुई थी इसके बल के बारे में। और वही हाथी जब भाग के हुए पागल होकर दौड़ते हुए आता है तो 5 मल्ल भाग जाते हैं, जितने पहाड़ जैसे थे वो भाग जाते हैं, लेकिन कंस वहीं कभी खड़ा रहता है। और वो हाथी जब सामने आता है तो उसको पकड़ के ऐसे घुमाता है गोल 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 और फेंक देता है उसको, और फेंक कर दोबारा वो जरासंध की पशुशाला में जाके गिर जाता है। जरासंध को खबर मिलती है कि किसी ने तुम्हारे हाथी को उठाकर गोल गोल घुमाकर मूर्छित करके दोबारा पशुशाला में फेंक दिया है, जो यहाँ से भाग गया था। तो जरासंध आके भाग के देखा, अरे मेरे इतने भयंकर हाथी की अवस्था करने वाला कितना बड़ा वो योद्धा होगा। तो खबर मिलती है उनको कि अरे कंस है वो यहाँ पर युद्ध करने आया है, दिग्विजय करने के लिए आया है। तो बोलता है ये योद्धा जो है वो युद्ध करने लायक नहीं है, दोस्ती बनाने के लायक है, रिश्ता बनाने लायक है, सोचा कि इसके साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, हाँ राजनीति कहते हैं उसको। बड़ी बुद्धि से काम लिया उसने, इस व्यक्ति से दोस्ती करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, तुरंत अपने पत्नी अपने बेटियों को लिया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि इतने छोटे समय में उसने क्या बताया उनको, वो कैसे कन्विंस किया। शादी के लिए कन्विंस किया उनको कि मैं आपको दोनों को अभी ले जाकर कंस के साथ शादी करने वाला हूं, वो हाँ या ना बोलने का स्कोप ही नहीं दिया। सजा धजा कर लेके गए, सीधे तंबू में प्रवेश किया और वहीं के वहीं शादी कर दी उसकी, और हाथी भी उनको भेंट में दे दिया। बोला लो और हमारे जमाई बनो, हम आपके बने ससुर, और आज से हमारी दोस्ती आ रही है और रिश्ता बन गया। आप समझ सकते कितना बल था। जरासंध एक अजय वीर था, उसको तो ऐसे वरदान थे कि वो भयंकर, वो उसको कपट से ही मारना पड़ा बाद में, ऐसे आसानी से वध नहीं हुआ उसका। ऐसा वीर था वो, लेकिन वो कंस का दोस्त बना, इतना बल था कंस के अंदर। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको कि वो कंस बरसाना में आकर स्त्री बन गया। कैसी अवस्था हो गई उसकी, क्यों हुआ वो? राधा रानी के क्षेत्र के प्रभाव से हुआ। राधा रानी के क्षेत्र में प्रवेश किया ना उसने, इससे बड़ा पराजय क्या हो सकती है किसकी? ना शस्त्र से मारने की जरूरत है, ना बाण मारने की जरूरत है, ना कुछ बुरा बोलने की जरूरत है, बस आते ही कन्या बन गया। तो इतना संकोच में आ गया, रोने लगा वो, ना घर जाने को, ना वहां रहने के, क्या करें अभी? सब गोपियों के पास जाके रोने लगा, मुझे बचा लो बचा लो, कुछ करो मेरे लिए, अभी देखो इतना दिग्विजयी। हाँ, हाथी को फेंकने वाला वीर जो है ना, गोपियां जो गोबर उठाती है, जो दूध निकालती है, गोबर साफ करती है, गाय को साफ करती है, क्या क्या करती है, वो सिंपल सिंपल काम उनके चरणों में गिर रहा है, बोल रहे बचाओ तुम ही कुछ कर सकते हो, तो वो तालियां पीट रही है, बोलो पहले, बोलते कंडे लिपो पहले। कहते हैं बस गोपियों ने 6 महीने तक कंस के द्वारा कंडे लिपवाए। आप में से कितने लोगों ने कंडे लिपे बताओ, प्रामाणिकता से बताओ। नहीं, कोई नहीं, इसके अंदर नवी मुंबई में कोई नहीं कंडे लिपने वाला। वो मतलब क्या होता है उसका? हाँ, कौन है वो? एक भाग्यवान जी कोई होगा शायद। हाँ, यस यस, वो बहुत पवित्र कार्य है, गाय का गोबर को स्पर्श करना जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने वाला कार्य है, और वो गोपियों के भाग्य में था। वो क्या करती थी, गाय का दूध निकालती थी, गोमूत्र निकालती थी, गोबर निकालती थी, वो उसको इकट्ठा करती थी, रज रज के साथ मिलाकर उसके कंडे बनाकर पेड़ में पहाड़ में सब सुखाती थी, हाथ के उस निशान बनाकर। हाँ, फिर उसको जो सूख जाते थे तो उसको सर पे धारण करके लेके आते थे, फिर एक ऐसा झोपड़ी बनाते थे, उसके अंदर गोबर का झोपड़ी के अंदर वो सारे कंडे जमा करते थे, और फिर एक एक करके उसको भोजन में बनाते थे। आपने कभी खाया है भोजन गोबर के कंडे पर बनाया हुआ? रोटी खाया कभी आपने? कभी मिट्टी में गोबर के कंडे लकड़ी में बनाया हुआ रोटी सब्जी दाल खाया आपने? इतना स्वाद है उसके अंदर, 100% पोषण प्राप्त होता है। बाकी सारे कुकिंग के अंदर जितना पोषण प्राप्त करते ना, अमुक अमुक परसेंटेज पोषण नष्ट होते जाता है। स्टील में करेंगे, लोखंड में करेंगे, एल्यूमिनियम में करेंगे, इसमें करेंगे, उसमें करेंगे, उससे ज़्यादा अगर गोबर के कंडे में, लकड़ी में बनाएंगे और मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, तो उस अन्न का 100% पोषण आपको वैसे के वैसे ही प्राप्त हो जाता है। ऊपर से स्वाद जो है वो फ्री में मिलता है, बहुत सुंदर। तो इतना सारा कार्य जो है, जिसको हम लोग कहते हैं हमने श्रवण करते, वो कार्य दिग्विजयी सम्राट कंस के द्वारा कराया उन्होंने। वो भी तालियां पीट कर उसका उसका मजाक करते करते, ताने मारते 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 किया। सोच सकते हैं आप कितना दुख हो सकता है उसको, कितना दुख हो गया होगा, मतलब क्या करें उसको ना। हमारे मराठी में एक ऐसी कहावत है, सह नहीं होत नहीं सांगता ही येत नहीं। है ना, ऐसे अवघड़ धागे दुखना है, सह नहीं होत नहीं सांगता ही येत नहीं। अभी ऐसा दुख तकलीफ है कि वो कुछ बोल नहीं सकते और इलाज भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते, इतना तकलीफ हो रही है। ऐसा भयंकर संकट था कंस के लिए। इतना संकट केवल क्यों हुआ? राधा रानी के क्षेत्र में आया, गलत भाव लेकर आया, इसलिए उसकी अवस्था हो गई है। अभी ऐसा देखेंगे ना, तो गोपियां क्या कर रही है आप बताओ? गोपियां दिन रात क्या कर रही है? आनंद से वही काम कर रही है जो कंस से करवा रही है, प्रेम से कर रही है ना गोपियां। मतलब गोपी बनना कितना भाग्य की बात है। देखो आप, वो प्रेम से भगवान के गायों का दूध निकाल रहे हैं, प्रेम से उसको गोबर का कंडे बना रहे हैं, प्रेम से वो दही को जमा रहे हैं, फिर उसका मंथन कर रहे हैं, गीत गाते हुए कर रहे हैं, उस दही मंथन से मक्खन निकाल रहे हैं, वो मक्खन मटके में रख रहे हैं, कहीं मेरे घर में कृष्ण आएगा और वो चोरी करके खाएगा, फिर मैं डांटूंगी उसको, लेकिन उसी को खिलाऊंगी और प्रार्थना भी करूंगी कि वो मेरे ही घर पे आएगा और मेरे ही आज मक्खन चुराएगा। ऐसी प्रार्थना करते करते बनाते हैं, वो इतना आनंद प्राप्त करते हैं, उसी का घी बनाते हैं, उसकी बर्फी बनाते हैं, उसकी मिठाई बनाते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हुए कार्य करते हैं। जो कार्य करते हुए कंस को कितना दुख हो रहा है, हरे कृष्णा क्या हो गया, कीर्तन करो।